जय जय श्री राधे श्याम कर दीजिए। जय हो वैष्णव। जय जय श्री राधे श्याम। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, श्री राधे। और प्रेमानंद हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदा हरि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे हरे हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, राधा अष्टमी महोत्सव की, रावल गाम की, श्री वृषभानु बाबा की, सीता महारानी की, जय जय श्री राधे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जये मौदीरये, नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ठ किम्। श्री गुरुवे गौरचंद्राय नमः,
राधिकाए सदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यत्किं करीषु बहुश खलु काकुवाणी नित्य परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले तस्य कदा रसनिधे वृषभानुजाया तत्केलिकुञ्ज भवनाङ्गनमार्जनी स्याम् भावराधिका माधुरी आस्वादन सुखकाज जय श्री कृष्ण चैतन्य जय कलि प्रगटे ब्रजराज राधा रानी की जय। तो आप सभी वैष्णव का हार्दिक स्वागत है राधा गिरिधारी मंदिर में। विशेष आज आप सभी वैष्णव जानते हैं कि भगवान कृष्ण की परम प्रिया सर्वकांता शिरोमणि महाभाव स्वरूपा श्री निकुंजेश्वरी रसेश्वरी श्री राधा रानी का आविर्भाव क्या कहेंगे हैप्पी बर्थडे है दिव्य जन्मोत्सव है। स्पेशली गौड़ीय वैष्णवों के लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं, क्योंकि कृष्ण प्रेम का जो खजाना है, कृष्ण भाव का जो भंडार है, उसको लेकर जो प्रकट हुई है भूतल पर उस देवी उस परम प्रिया हरिप्रिया चाहे कृष्ण प्रिया श्याम प्रिया जो भी कहिए उनके जन्मोत्सव में भाग लेना इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं। वास्तव में मानो या न मानो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं प्रभुपाद जी के अनुग्रह आशीर्वाद के भाजन है कि हम श्रीमती राधा रानी के इस दिव्य जन्मोत्सव को मना रहे हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। क्यों? क्योंकि हम है यहाँ कथा में कीर्तन में है ये सौभाग्यशालीता है। तो बहुत ही गहरा विषय है राधा तत्व राधा भाव राधा स्वभाव राधा लीला। ये कहना कृष्ण के बस की भी बात नहीं। स्वयं कृष्ण पावे नहीं पारा और राधा तुम्हें कौन जाननी हारा। कृष्ण भी तुमको नहीं समझ सकते तो दूसरा मनुष्य के विषय में क्या कहा जाए। कृष्ण भी नहीं पूरा पूरा राधा तत्व का विरूपण कर सकते हैं। ऐसे लोग गीता में सुने आए हैं कि मनुष्याणाम सहस्त्रेशु हजारों मनुष्यों में कोई एक भगवान कहते हैं कि तत्वत मुझे जानता है ना, सातवें अध्याय में। लेकिन ऐसे करोड़ों करोड़ों कृष्ण तत्व को जानने वालों में से कोई एक राधा तत्व को जानता है, ये उससे भी ऊंचा है यह तत्व। किसी ब्रज भाषा के रसिक ने बड़ा सुंदर लिखा है, भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, पवन तत्व, ब्रह्म तत्व, व्योम तत्व, विष्णु तत्व, भोरी है, ये सब तत्व है। तत्व की बड़ी चर्चा है हमारे वेदों में। पंच तत्व, एक इस्कॉन में एक नया है पंच तत्व लोगों के लिए। ऐसे पंच महाभूत तत्व तो थे, फिर थे शिव तत्व, शक्ति तत्व, विष्णु तत्व, जीव तत्व, गीता में चले जाइए फिर भागवत में चले जाइए दाम तत्व, लीला तत्व, रूप तत्व, नाम तत्व, इस्कॉन में आ जाइए पंच तत्वात्मकम कृष्ण पंच तत्व। ये सब तत्व की बड़ी चर्चाएं है। तत्व में प्रभुपाद जी कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ, वास्तविक सत्य, यथार्थ स्थिति तत्व मीन्स। लेकिन स्थान स्थान पर अलग अलग अर्थ होता है। लेकिन सबसे बड़ा तत्व विष्णु तत्व, शास्त्र इसको प्रमाणित करता है, हम नहीं करते हैं। सनकादिक सिद्ध तत्व, आनंद प्रसिद्ध तत्व, नारद सुरेश तत्व, शिव तत्व गोरी है, शिव जी कहे चाहे नारद जी, ये सब कहते हैं कि कृष्ण तत्व सबसे ऊंचा है, सबसे महान है। लेकिन प्रेमी कहे नाग किन्नर को देखो तत्व, शेष और महेश तत्व नैति नैति जोरी है। लेकिन ये शेष शारदा और शिव भी हाथ जोड़ लेते हैं कि इसको हम समझ, किसको, कृष्ण तत्व को। तत्वन को तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, कृष्ण हु को तत्व वृष भानु की किशोरी है। पूरे जगत के सर्व तत्व सार शिरोमणि कृष्ण के भी जो आनंद घन है उसको आनंद देने वाले। मदन मोहन मोहिनी श्री प्रियाजू श्री राधिकाजू के तत्व के विषय में बोलना ये मानो एक ऐसा साहस है कि मच्छर होकर मेरो उठाने चला है। मानो मच्छर कहीं सोचे कि मैं चलो मेरो पर उठाई लेता हूं, होगा नहीं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि न तो हम में कोई पवित्रता है, न कोई ज्ञान है, न कोई अनुभव है। लेकिन आचार्यों से जो सुना है, गुरुजनों से, शास्त्रों में, चैतन्य चरितामृत भागवत आदि ग्रंथों में प्रभुपाद जी की कृपा से जो पढ़ा है, उसको तोते की तरह बोलना है, रिपीट, जस्ट रिपीट इट, उसको केवल कह देना है। कोई प्रश्न आपको होगा हमारे प्रवचन के बाद तो आप व्यास जी को फोन करिएगा, कृष्णदास कविराज जी से मीटिंग अरेंज कर लीजिएगा, क्योंकि हमको उत्तर पता नहीं, हमने तो जो बोला है लिखा है वो बोल देंगे बस। इसके पीछे क्या रहस्य है ये तो अब यही जाने। जीव की सामर्थ्य कहाँ। वेंकट भट्ट जब महाप्रभु गए काली के तट पर दक्षिण भारत में, और बड़ी चर्चा चली है महाप्रभु और वेंकट भट्ट के बीच में कि तुम्हार लक्ष्मी ठाकुरानी क्यों हमारे कृष्ण के चरणों की कामना करती है, रास में एंट्री चाहती है वगैरह वगैरह, बड़ी ऊंची चर्चा है। लेकिन जब ये प्रश्न महाप्रभु ने पूछा तो वेंकट भट्ट ने एक बड़ा सुंदर श्लोक कहा है जो हम लोगों के लिए सत्य है। आमी जीव शुद्र बुद्धि सहज अस्थिर ईश्वर लीला कोटि समुद्र गंभीर। महाप्रभु ठीक है उसका रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं, हटाइए, ये वैष्णव के दर्शन हमारे नहीं हो रहे हैं, इनको हटा लीजिए। ऐसे ही हवा में है, हवा कम करनी, हवा ही मनुष्य को बहुत परेशान करती है। ठीक है थोड़ा गर्मी भी होगा चलेगा, लेकिन इसको साइड कर लीजिए, इसको दिखने चाहिए। हाँ ओके, आप ध्यान दीजिए वेंकट भट्ट क्या कह रहे हैं। आमी जीव, मैं तो एक शूद्र कण, क्या कहे अणु, और शूद्र बुद्धि, मेरी बुद्धि एकदम तुच्छ है, और सहज अस्थिर और अनबैलेंस माइंड, मेरा चित्त का कोई ठिकाना नहीं है, व्यावसायिक का बुद्धि थोड़ा है, एक रे थोड़ी है, बहुशाखा वाले हैं हम लोग। और ईश्वरेला लीला, कृष्ण की लीला कैसी है, कोटि समुद्र गंभीर, एक समुद्र की गहराई आप नहीं माप सकते, तो करोड़ों समुद्र में कितनी गहराई और कितना जल है कोई माप सकता है नहीं। बस हमारी दशा ऐसी है, इसलिए महाप्रभु आप कहिए कि लक्ष्मी क्यों ये सब कर रही है। अंततः कहने का प्रयोजन यह है, रूप गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु जी से मिले तो महाप्रभु के इस सौंदर्य, उस करुणामयी विग्रह को देखकर चैतन्य मनोभिष्टम है रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु के मन अभिलाषा को जानने वाले, जानकर बैठे रहते नहीं, स्थापितम उसको पूर्ण करने वाले हैं। और वे रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, महाप्रभु आपकी जो दया करुणा महावदान्यता है उसके विषय में मैं कुछ गुण गाना चाहता हूं, लेकिन ये ऐसी दशा है जैसे बामन हैया चांद धरीते चाय, जैसे कोई बामन टिंगू जी बटुक कहते उसको, वो चांद पकड़ने की इच्छा करे, ये असंभव है, कोई नहीं सकता, मैं ऐसा ही कुछ करने जा रहा हूं, लेकिन फिर गुण तो गा रहे हैं रूप गोस्वामी। तो एक बड़ा सुंदर बात कहते हुए प्रारंभ करते हैं रूप गोस्वामी, वो कहते हैं कि आपने अयोग्य देखी मने पाऊं क्षोभ, तथापि आप नार गुण उपजाय लोभ, मैं अपने आप को अयोग्य समझ रहा हूं इसलिए मेरे मन में व्यथा हो रही कि मैं कैसे गुण गाऊं कृष्ण आपके, लेकिन जब आपकी करुणा पर विचार करता हूं अपनार गुण उपजाए लोग, तब मुझे लगता है कि नहीं गाना चाहिए, विषय में कुछ कहना चाहिए, ऐसे तो मैं अयोग्य हूं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा करुणा कटाक्ष मिल जाए ना, क्योंकि वो राधा कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, और उन किशोर किशोर की करुणा का कटाक्ष का कोई पात्र बन जाए, काकेर गरुड़ करे ये न किच कौन दयामय, कौवा भी गरुड़ बन जाता है भाई, महाप्रभु की करुणा से कौवा भी गरुड़ बन सकता है। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस राधा तत्व का निरूपण करते हुए चैतन्य चरितामृत आदि लीला प्रथम और चौथा अध्याय के प्रथम श्लोक में सुंदर प्रार्थना की है गौर की, श्री चैतन्य प्रसादेन तद्रूपस्य विनिर्णयः, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्रसाद से मैं उनके ही विषय में कुछ बोलने का साहस करूंगा, निर्णय कर रहा हूं, लेकिन एक बात कहते हैं कि यत कृपा प्रसादेन, इसकी कृपा से बालोपि कुरुते शास्त्र दृष्ट्वा व्रज विलासिनः, बालक भी शास्त्र का मर्मज्ञ विद्वान हो जाएगा, जो ब्रज प्रेम लीला बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र के लिए अगम्य है अगोचर है, महाप्रभु की कृपा से बालक भी इस ब्रज तत्व ब्रज प्रेम लीला को जान लेगा। बालो अपि कुरुते शास्त्रे दृष्ट्वा ब्रज विलासिनी, वृंदावन में राधा कृष्ण का जो विहार है उसको समझ लेगा कौन, जो महाप्रभु की कृपा का पात्र है। कृपा पात्र पर कृपा पात्र पात्रता धारण करने का क्या साधन है, तत्चरणे समर्पण मस्तु, उस महाप्रभु और महाप्रभु के आश्रित गौड़ीय षट गोस्वामी वैष्णव आचार्य परंपरा के चरणों में समर्पण। समर्पण का क्या भाव है, क्या उद्देश्य, उनकी आज्ञा निर्देश अनुसार जीवन यापन है ना, समर्पण मतलब उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, और ऐसा व्यक्ति सहज नहीं तो राधा कृष्ण प्राणम और भजन में कितना सुंदर बात लिखा है कि पा नहीं सकता, वो तो सखियों का अधिकार है, वो तो ललिता विशाखा की प्राण धन संपत्ति है राधा कृष्ण गल सेवा, लेकिन ललिता विशाखादि जत सखी वृंद, लेकिन तुम्हार आज्ञाए पाए सेवा चरणार विंद। इसलिए महाप्रभु ने कहा गोपीर भर्तु पद कमल यो दास दासानु, इन गोपीजनों के पथ पर चलने वाले वैष्णव के दासों के दासों के दास बनने से उस तक पहुंचा जा सकता है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास, सेवा विलास करे नरोत्तम दास। तो ये है, हम इसीलिए इस बात को बता रहे हैं कि अगर चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझेंगे राधा तत्व को कभी नहीं समझेंगे। गौरा हईत तबे तबे की हईत, तब क्या होता है? राधा रमही बा प्रेम रस सीमा जगत जानत के, कौन जानता राधा रानी की क्या महिमा है? कृष्ण भी नहीं जानते थे, दूसरे की बात ही छोड़ो, कृष्ण भी नहीं जानते। वो गीता में क्या कहते, वेदाहम समतीतानि, अर्जुन मैं सबका भूत भविष्य वर्तमान जानता हूँ। अच्छा हुआ अर्जुन ने पूछा नहीं, प्रभु जी आप राधा रानी के विषय में जानते तो उसको बोलना पड़ता, सॉरी सॉरी सॉरी। वो तो अर्जुन ने अच्छा किया, ठाकुर जी की लाज रख ली कि पूछा नहीं, क्योंकि वे कृष्ण स्वयं कहते हैं चौक्षम साक्ष्यम मद अनुभवत की दृश्यो राधा प्रणय महिमा। वो कहते ना राधा रानी का क्या मधुरिमा है, सेवा में उसको क्या सुख मिलता है, उसको जानते नहीं। इसी को जानने के लिए रंग बनना पड़ा, मतलब नहीं जानते थे राधा रानी का क्या भाव प्रेम है, वो तो नहीं, वो जानने के लिए तो गौरांग बनना पड़ा ना कृष्ण को। तो अर्जुन ने लाज तो रख ही ली, तो फिर दूसरा कोई क्या जानेगा क्या समझेगा। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में बहुत ही सुंदर संक्षेप में सार रूप में कबीरदास जी ने राधा रानी के तत्व को निरूपण किया है। हम गौड़ीय वैष्णव के लिए ये जानना समझना बहुत जरूरी है, और उसके बाद राधा भाव, उसके बाद राधा की कृष्ण के प्रति जो अतरंग लीला, नेक्स्ट स्टेप 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 होता है। इसलिए हम तो है ही महामूर्ख, लेकिन किशोर जी की कृपा हो जाए और उनकी कृपा से उनको प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि आज उनका बर्थडे है, ऐसे ही प्रसन्न है। और देखो वो भी गिरधारी भी कितने इतरा रहे, क्योंकि उनकी प्रिया का बर्थडे तो उनको ज्यादा फॉर्म है, उनके जन्मदिन पर इतने खुश नहीं थे। आप देखे होंगे श्रृंगार देख लेना जन्माष्टमी का, ऐसा नहीं था जो अभी है, अभी उसका मूड थोड़ा अलग है, ऐसा स्वाभाविक है ना। अपने बर्थडे से ज्यादा अपनी जो प्राण प्रिया है उनके बर्थडे पर व्यक्ति ज्यादा उदार हो जाता है। इसलिए आप कृष्ण कृपा भी आज लूट सकते हो, लेकिन कृष्ण कृपा का भंडार की जो खजाना की चाबी तो उन बाम विभाग में जो स्थित है ना उनके हाथ में। तो कृष्ण भी आज राधा रानी का बर्थडे मना रहे हैं, सब देवता तो मना ही रहे। देखिए कृष्ण जन्म बड़ा फेमस है, लेकिन राधा रानी के जन्म के विषय में कुछ सिलेक्टेड वैष्णवास, सिलेक्टेड आत्मा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कितने वैष्णव है फिर भी नहीं समझते अन्य अन्य संप्रदाय अंतर्गत राधा जन्म को नहीं मना रहे न जानते, इसलिए क्या कहना पड़ेगा सिलेक्टेड वैष्णव, जो कुछ सौभाग्यशाली वैष्णव है गौड़ीय धारा में है उनको ये सौभाग्य है। इसलिए आप समझ सकते हो कि हम प्रभुपाद जी ने हमें क्या दिया है, बड़ी ऊंची वस्तु हमारे हाथ में दे दी है। तो कुछ बताने का साहस करने जा रहे हैं, किशोरी जी कृपा करें, आप सभी वैष्णव अनुग्रह करें। राधा तत्व भाव स्वभाव के विषय में तो अनंत समुद्र है, लेकिन कुछ सिंधु का बिंदु आस्वादन करेंगे जो समय है हमारे पास। हमने श्लोक चुना है श्री चैतन्य चरितामृत से शिक्षा अष्टम का अंतिम श्लोक, जो राधा भाव ध्रुति सुवलितम गौरांग, उस गंभीरा में अतरंग पार्षद स्वरूप दामोदर राय रामानंद के बीच बोल रहे हैं। महाप्रभु ने अपने मस्त जीवन लीला चरित्र में रूप को, रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को, अन्य अन्य आचार्य को बहुत कुछ उपदेश दिया, लेकिन अपने मुख से केवल 8 श्लोकों की रचना की, जो समस्त वेदों का सार गीता और भागवत है, और उनका भी सार है श्री शिक्षा अष्टकम। ये उनका भी सार है। और उस शिक्षा अष्टकाम काम की जो अंतिम भाव प्रेम महाभाव, उसका प्रदर्शन, उसका दर्शन इस श्लोक में महाप्रभु ने किया है। आप सभी वैष्णव इस श्लोक से परिचित है, इसको रोज सुनते पढ़ते हैं, लेकिन कविराज गोस्वामी ने महाप्रभु के मुखारविंद से ही इस श्लोक की बंगला भाषा में बड़ी सुंदर व्याख्या दी है। समय अवकाश रहा तो कुछ प्रकाश इस पर दिया जाएगा। आइए प्रभुपाद जी की परंपरा के अनुसार श्लोक का उच्चारण करते हैं, आवृत्ति करते हैं, शब्दार्थ अनुवाद। आश्लीष वा पादरताम पिनस्तु माम्। आश्लीष्य सवा पादरताम पिनस्तु माम्। अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा। अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा। यथा तथा वा विदधातु लंपतो। यथा तथा वा विदधातु लंपतो। मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। आश्लीष वा पादरतां पिनस्तु माम्। अदर्शना मर्महतां करोतु वा। यथा तथा वा विदधातु लंपतो। मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः।
बोलिए एकाद।
धन्यवाद। देखिए आप वैष्णव को एक कृष्णदास कविराज गोस्वामी का मैसेज देता हूँ जो इन्होंने इस शिक्षाष्टकम के प्रारंभ में लिखा है, इस अध्याय में चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला विश्वाध्याय की जब शुरुआत करते हैं तो एक बात लिखते हैं शिक्षाष्टकम के महिमा के विषय में। वो कहते हैं प्रभुर शिक्षाष्टक श्लोक ये ही पढ़े सुने कृष्ण प्रेम भक्ति तार बाढ़े दिने दिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। इस शिक्षाष्टकम को, इन श्लोकों को जो वैष्णव सुनेगा या पढ़ेगा तो कृष्ण प्रेम भक्ति तारे बाढ़े, प्रतिदिन उसके जीवन में कृष्ण भक्ति की वर्षा होगी, प्रेम, कृष्ण प्रेम का शावर। कितना सरल उपाय है, इसीलिए इस कान में मंगला में बोला जाता है इसी को। अगर इसको हम समझेंगे तो भाव से बोलेंगे, नहीं तो हम लोग क्या से ध्यान, यही है रूटीन मैकेनिकली चेतो दर्पण मार्गन, चलो खत्म करो, ऐसे ही चल रहा है। लेकिन जब सुनेंगे कि क्या बोला जा रहा है, देखिए आप यही बड़े सुने, कृष्ण प्रेम भक्ति उसको प्राप्त हो, या आशीर्वाद दिया जा रहा है कविराज जी के द्वारा इस शिक्षा को, इसलिए बड़े भाव अनुराग के साथ इसको बोलना है, चित्त लगाते हुए मन को एकाग्र करके। बड़ा पावन पवित्र प्रसिद्ध सब कुछ है, महाप्रभु का राधा रानी का अंतिम स्वभाव बताया जा रहा है। व्हाट इज द मूड ऑफ राधा रानी, क्या राधा रानी का मूड है ये इसमें व्यक्त किया जाए, स्वयं राधा रानी कर रही है अपने कृपावश गौरांग तनु जब प्राप्त की है तब। तो ये समझने लायक है ना, आश्लिष्य आलिंगन करे वा अथवा पादरताम पैरों के द्वारा पिनस्तु ठोकर मारे, पीस डाले माम मुझको अदर्शना दर्शन न देकर मर्महता मेरे हृदय को व्यथा पहुंचा। इसलिए मेरे पास गुजराती है तो उसका मैं हिंदी कर रहा हूँ। आम लेकु से हृदय में आघात पामेली गुजराती करो तो जो करते हैं वा अथवा यथा उसकी जो इच्छा हो तथा वैसा वे करे। विदधातु वो करने में समर्थ है, लंपट बहुत स्त्रियों के साथ आनंद लेने वाले, मत प्राणनाथ मेरे जीवन के प्राण आधार, मेरे प्राणों के स्वामी तू, परंतु स वे एव निश्चय ही केवल न अपरह और कोई नहीं। तो यह कुछ शब्दार्थ है, प्रभुपाद जी ने ही अनुवाद किया है। कृष्ण उसके चरण कमलों में पड़ी हुई इस दासी का चाहे आलिंगन करे या पैरों से ठोकर मार के पीस डाले, वे मेरे दृष्टि से दूर होकर मेरे हृदय को व्यथा पहुंचाए, वे लंपट कुछ भी करे फिर भी सदैव वे ही श्याम सुंदर ही मेरे प्राणनाथ है, दूसरा और कोई नहीं। ये इसका हिंदी। तो राधा रानी कितना सुंदर बता रही है कि श्री कृष्ण जो रसिक शेखर है, रस रसिक रस के लोलूप है, और अनेक नायिकाओं में वो कुछ विशेष रस की प्राप्ति हेतु अतरंग लीलाएं करते रहते हैं, लेकिन वो मुझे अपना मानते हैं। कृष्ण मुझे क्या मानते हैं, मुझे मेरी मानते हैं और मैं हूं ही उनकी। आमी कृष्ण पद दासी, मैं कृष्ण के चरणों की क्या हूं, दासी। और तेहो रस सुख राशि, और वे क्या है, समस्त रसों के सुख को लूटने वाले, राशि मतलब निधि समुद्र क्वांटिटी, अनंत सुखों के आगार, जैसे रूप गोस्वामी ने लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु के मंगलाचरण में, अखिल रसामृत मूर्ति, तो वो रसों के आगार है और मैं उनके चरणों की आलंगिया आलिंगिया करे आत्मसात, चाहे वो मुझे अपना मारकर मानकर अपने भुजाओं में मेरा आलिंगन करे, आत्मसात करे, किवा ना दे दर्शन, और चाहे तो वो मुझे दर्शन न दे, और धर्म और तनु मन, और मेरे मन को तन को जलाए, व्यथा पहुंचाए, तबु ते हो मोर प्राणनाथ, फिर भी वे ही मेरे प्राणनाथ है। ये राधा रानी का वास्तविक मूड भाव है कृष्ण के प्रति। इनकी बृहद सुंदर व्याख्या आगे है जो विवेचन करने का प्रयास करूंगा मैं, बहुत ही ऊंचा है ये भाव। याद आता है मीरा का पद, उसने भी कुछ ऐसा ही लिखा है कि मेरे तो गिरिधर दूसरो ना दूसरा नहीं, और हम लोग चलो इधर थोड़ा टोकरी हिलाते हैं तो नहीं जमता है तो उधर दिया जलाते हैं, उधर नहीं जमता तो उधर, हम लोग क्या है। लेकिन देखिए यहाँ सही वह कुछ भी करे लेकिन मेरे प्राणनाथ वही रहे। ये है अनन्य शुद्ध भक्ति का व्याख्या, शुद्ध जिसमें बिल्कुल स्वसुख का गंध ही नहीं है, तत्सुख सुखित्वम की महाभाव की पराकाष्ठा, ये राधा रानी का ये उद्गार है जो गौड़ीय वैष्णव के लिए मनन चिंतनीय विषय है। तो राधा रानी के इस पावन पवित्र जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम वैष्णवों को आचार्यों के माध्यम से उनके जन्म लीला तत्व को समझने का कुछ प्रयास करना है। ऐसे तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और उनके आश्रित सनातन रूप आदि गोस्वामी, विशेषकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कृपा से राधा रानी के तत्व के विषय में हमें जानने का ये शुभ अवसर प्राप्त होता है। अन्य ग्रंथों में तो ये दुर्लभ है ये तत्व समझना। वैसे कृष्ण की अनंत शक्तियां है, उपनिषद कहता है परास्त शक्ति विविधेय सूयते, अनंत शक्तियां है। लेकिन विष्णु पुराण में लिखा है कि हलादिनी संधिनी संवित, ये तीन मुख्य है, अतरंगा शक्ति के अंतर्गत ये तीन शक्ति मुख्य है, करोड़ों शक्तियों में तीन मुख्य है, ततस्थ बहिरंगा और अतरंगा, और इन अतरंग के अंतर्गत तीन विभाग है हलादिनी संधिनी संवित। आनंदाशय हलादिनी, हलादिनी का अर्थ होता है जो आनंद प्रदान करे, और सद अंशे संधिनी, संधिनी का अर्थ होता है सत्ता आधार जो सत्य हो, भगवान का धाम जो संधिनी शक्ति का विलास, जो चिन्मय है शाश्वत है काल से परे है, भगवान के माता पिता या भगवान के वस्त्र भगवान की शैया, ये सब कविराज गोस्वामी कहते हैं संधिनी अंशेर विलास, सद अंश का विलास, और चित अंशे संवितार ज्ञान करिमानी। ज्ञान क्या है, प्रश्न पूछा जाए गौड़ीय वैष्णव को कि शक्ति के विषय में ज्ञान क्या है, तो बस यही है आनंद देने वाली हलादिनी, सत्ता आधार बनी हुई है धाम का वो संधिनी, और चिद माने ज्ञान संबित, और ब्रह्मादिकतार परिवार, ये ब्रह्मा आदि के द्वारा जो सृष्टि लीलाओं में जो ज्ञान का विस्तार करते रहते हैं भगवान, तो ये मुख्य तीन है। लेकिन ये बातें हम सुनने के लिए और बोलने के लिए ठीक है, लेकिन इतना हृदयस्थ होती नहीं है। हम बार बार सुनते अलादिनी शक्ति स्वरूपा, अतरंगा शक्ति स्वरूप शक्ति, प्लेजर पोटेंसी इटर्नल प्रेजेंट पोटेंसी कुछ भी कहते रहो, लेकिन ओके है कुछ, लेकिन क्लियर नहीं होता, शायद आप भक्तों को होता होगा, क्योंकि हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो सब क्या है, जड़ है। क्या है? मैटर है। ये बुद्धि मन ये सब कौन सा है? भिन्ना प्रकृति गीता में लिखा है। और ये बात किस प्रकृति की कर रहे हैं हम? स्वरूप प्रकृति। कैसे समझ में आएगा? हाँ, माया प्रकृति की कुछ बात करो तो तुरंत समझ में आता है, क्योंकि दिखता है रजोगुण तमोगुण का प्रभाव, काम करो सब दिखता है, तो समझ में आता है। गीता के विषय में जो गुणों की व्याख्या है वो कुछ समझ अपने अनुभव में भी है और प्रदर्शन भी है, दिखता भी है। लेकिन ये जो बातें यहाँ हो रही है वो तो इंद्रियों से गोचर स्वाभाविक है, क्योंकि इंद्रिया जड़ है बुद्धि सब, और ये बात हो रही है सर्व शक्ति। इसीलिए उसकी कृपा से इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाया जाए और वे शुद्ध हो जाए, तब कुछ कुछ समझ में आ सकता है, वरना। लेकिन यही उपाय है, किसी की बात को समझने का प्रथम सोपान क्या है? सुनना। प्रथम स्टेप तो यही है ना कि सुनना, और हम तो उसमें भी फैल है, ठीक से सुनते भी नहीं पहला तो यही है सुनना, फिर कहना, और उसके बाद आवृत्ति बार बार, ये भी है एक स्टेप, बार बार। हम लोग तो इस राधाष्टमी से फिर उस राधाष्टमी, तब तक पता ही नहीं है क्या ये बात हो रहा है शक्ति है। प्रभुपाद जी जब लंदन में इस भक्तिवेदान मैनर 1976 में जो लेक्चर देते हैं तो उसमें कहते दैवी ऐसा गुण में ही, जो नहीं वो जो देवी प्रकृति मास्थित भगवद गीता 9:13 महात्मानस तु माम पार्थम, उस श्लोक को कहते हैं कि इसमें जो दैवी शब्द है वो राधा रानी, तात्पर्य में भी लिखा है। और आप महामाया प्रकृति के अंदर में रहो या फिर दैवी प्रकृति मास्थितम रहो, क्योंकि जो भक्त होते हैं अनन्य भाव से भजन करने वाले दैवी प्रकृति मास्थिता, दैवी प्रकृति आस्थिता मतलब राधा रानी की शरण में, तो सीधा अर्थ करते हैं इस तरह। लेकिन जब तक शुद्ध वैष्णव से सेवा करते हुए श्रद्धा भाव से इनको बार बार सुनेंगे, तब कुछ कुछ आशा कृपा के बल पर समझने की है। इसलिए हम तो आवृत्ति कर रहे हैं बस, केवल सीधा लिखा है प्रेमेर सार महा, प्रेमेर सार भाव और भाव पराकाष्ठा महाभाव। अब प्रेम क्या है वही नहीं पता हम, फिर भाव की परिभाषा ही नहीं पता, तो महाभाव का कैसे पता चलेगा? राधा रानी प्रेम स्वरूपा है, और प्रेम का सार भाव है, और भाव का सार महाभाव है, और महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठकुरानी सर्व गुण खनी कृष्ण कांता शिरोमणि। अब लो, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठकुरानी सर्व गुण संपन्न और कृष्ण की जितनी प्रेयसी है, जितनी कांताएं है, उनमें शिरोमणि टॉप ऑफ द मास सर्वश्रेष्ठ। उज्ज्वल नीलमणि में भी ये लिखा है कि तयो रुभयो मध्य सभी सखियों में, या विशेषकर चंद्रा और राधा में, मध्य राधिका सर्वाधिका, राधिका जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। महाभाव स्वरूपेय गुणे रति वरीयसी, सर्व गुणों में वरीयसी है राधा रानी। क्यों? इसके लिए एक बात है, क्योंकि वो कोई और नहीं है, स्वयं कृष्ण ही है। राधा रानी कोई अलग तत्व नहीं है, कृष्ण ही है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, एक आत्मा है लेकिन दो शरीर लिया है। क्यों? अन्य अन्य विलसेय रस आस्वादन करी, रस आस्वादन के लिए इन एक ही तत्व ने दो रूप लिया है। पुरुषोत्तम स्वामी जो इस्कॉन जीबीसी है, आज पूरे मायापुर के प्रोजेक्ट को जय पताका महाराज के आज्ञा निर्देशन में संभालते हैं, वे अपने ग्रंथ में एक कथा लिखते हैं कि ये जो कृष्ण की आनंदायिनी शक्ति है, जो स्वयं कृष्ण ही है, वो कैसे प्रकट हुई, कैसे प्रकट हुई इन गोलोक वृंदावन में? कृष्ण रास मंडल में विराजे हुए थे, मालती मल्लिका के पुष्प से सुगंधित उस रास मंडल में एक दिव्य रत्न सिंहासन पर गोविंद विराजे हुए थे। और उस समय उसने मन में विचार किया कि मैं कुछ आनंद करूं, आनंद करने की इच्छा होते ही उसी के सामने बाजू में बाम भाग में बगल में एक दिव्य सुवर्ण वर्ण की तेजस्वी कांति वाली एक सुकुमारी नव यौवना प्रकट हो गई। बस विचार करते ही। अब आप लोग कहेंगे प्रभु जी ये क्या बता रहे हैं, ऐसे कोई होता है कभी कुछ कि हमारे भेजे में जाने वाला है नहीं? क्योंकि हम है भौतिक जगत के प्राणी बात कर रहे हैं। अब ऐसा तो होगा ना, इतना अंतर तो रहेगा भाई, क्या करें, इतना तो स्वाभाविक रहेगा। आप कहते कृष्ण भी कामना करे, कृष्ण भी इच्छा करते आनंद की, वो तो आनंद गण है। आप बोले कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह और उसको भी आनंद चाहिए, आनंद अलग से लेना पड़ता है उसको। अब ये भी एक चक्कर वाली बात है। हम लोग तो कुछ और कभी कभी क्या सुनते, कभी क्या सुना रहे हो आप कि उसको आनंद करने की इच्छा हो। ही हैड टू डिजायर टू एंजॉय, उसको आचरण करने की इच्छा हो, कैसे हो गई भाई, कैसे माने, ये भी चक्कर। क्योंकि वो तो आत्माराम है, आनंद घन है, लेकिन स्कंद पुराण में स्पष्ट व्यास जी ने लिखा है आत्मा सुराधिका शैव। वो कृष्ण की राधिका जो है ना, वो कृष्ण की क्या है, आत्मा ही तो है, कोई अलग थोड़ी है। और आनंद चाहिए तो आनंद ने ही रूप लिया, जो आनंद कृष्ण के अंदर है उसने ही रूप लिया है, जो आलादी। और उनकी इच्छा हुई क्योंकि वेदों में लिखा है, उपनिषद में, स कामयते, वो भी इच्छा करते है। और एकाकी न रमते, आपने सुने है सब वाक्य वेदों में है कि स एकाकी न, वो अकेले नहीं रमते, इसलिए एक को बहुश्याम, इसलिए वो बहुत बहुत हो जाते हैं। ये प्रभुपाद ने गीता में ये सब लिखा है, कोई बाहर की बात नहीं बोल रहा हूं मैं। एको बहुश्याम, ये परास्त शक्ति, जो भी वेद के सूत्र है, श्वेताश्वर के, मुंडक के, कंठ के, ये सब है उसमें, स्थान स्थान पर जहां की बात है। भगवान भी इच्छा करते हैं, वो एक, वो भी बहुत हो जाते हैं और उस रस, रसिक से का रस लेना जानते हैं, इसीलिए वो प्रकट हो गई, उस सिंहासन के बाजू में ही बैठ गई। स्वाभाविक है। पर मध्य रत्नासने बसिया छे दुई जने, श्याम संगे सुंदरी राधिका। बैठ गई भाई, उनका ही वो रिजर्व है, वो स्थान उनका, नो वैकेंसी, दूसरों के लिए नो चांस, ये उनका रिजर्व स्थान है राधा रानी का। बैठ गई। नाम राधा, रा शब्द का अर्थ होता है, ऐसे तो बहुत बहुत अर्थ होते हैं, लेकिन रा का सीधा अर्थ किया गया है रास मंडल, और धा का अर्थ है धावमानम, टू रनिंग वे। जो रास की ओर जिनकी चेष्टा है, रास क्या है, रसानाम समूह इति रास, जिसमें सारे रस प्रस्फुटित होते हैं, प्रकट होते हैं, स्वलीला रासलीला, जय जय रासलीला सर्व रस सार, कृष्णदास कविराज। अब ये केवल सुनने में आनंद देगा, बुद्धि में तो कब जाएगा पता नहीं। सुनिए, सुनने में भी सुख है, ऐसा कुछ है हमारे ग्रंथों में, ऐसा कुछ है। आचार्यों की वाणी ही प्रकट की जा रही है, सरल किया जाएगा उसको, धैर्य रखे। आप कहोगे प्रभु जी नींद आ रही है, ऐसे भी मंगला में आए थे और आप ऊपर से ये सब बता रहे हो, तो ये स्वाभाविक है, लेकिन क्या करें अब बताइए। तत्व जानने के लिए ना करीबे अलग, लीला सुनाएंगे, थोड़ा धैर्य रखो, पहले इसको समझ लेते हैं, शक्ति तकती तक लीला भी सुनाएंगे, तब तो पहले निरूपण करना पड़ेगा ना, जो आचार्यों ने लिखा है उसको आनंद देने वाली ये शक्ति प्रकट हो गई वहां पर। ऐसे हम सुनते कि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का हृदय और राधा रानी के कलर को लेकर गौरांग बने, और ऐसे तो प्रचलित है कि युग अवतार है, युग धर्म है नाम संकीर्तन, उसका प्रचार करने के लिए आए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा कि युग धर्म प्रवर्तत हय अंश हैते, ये युग प्रवर्तन, युग धर्म का प्रवर्तन करना तो मेरे अंश के अंश भी कर सकते हैं, स्वयं आने की जरूरत है क्या गोलोक बिहारी को, नहीं, कृष्ण के अंश अंश अवतार भी युग धर्म का प्रवर्तन करते हैं, सतयुग में जो धर्म था उसका प्रवर्तन स्वयं कृष्ण तो आए नहीं, ये कलयुग के युग धर्म को प्रवर्तन करने के लिए स्वयं आए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अन्य अवतार भी युग धर्म का प्रवर्तन करते, गीता में स्वयं कहते धर्म संस्थापना था संभवम युगे युगे, अलग अलग अवतार लेकर वही नहीं। तो ये तो गौरांग तो साक्षात कृष्ण है, राव अवतार तय नहीं, आप तत्व तो जानते हो स्वयं अवतारी है वे भी। तो फिर इसीलिए कहते हैं कि आमा बिना ब्रज प्रेम दीते नहीं शक्ति, मेरे स्वयं के आए बिना इन जीवों को ब्रज शुद्ध प्रेम भक्ति कोई और अंश अवतार दे नहीं सकता, इसलिए मुझे आना पड़ा। चिरकाले नहीं करी अमी भक्ति दान, बहुत समय से मैंने प्रेम भक्ति का दान नहीं किया, और भक्ति बिना नहीं जगत निस्तार। सकल जगत मोर करे विधि भक्ति, विधि भक्ति ब्रज प्रेम पाईते नहीं शक्ति। दुनिया सब भजन तो कर ही रही थी गौरांग महाप्रभु के आने के पूर्व भी, लेकिन या तो भय से कर रही थी या स्वार्थ से कर रही थी। मर गया बाप रे, आर्तो अर्थार्थी। कल प्रभु जी से हम बात कर रहे थे, गीता में कृष्ण कहते हैं कि आर्थ दुखी वो आता है, अर्थार्थी धन के लिए लोग आता है, ज्ञानी भी आता है। बोला हम लोग चारों है, दुखी भी है, कुछ ज्ञानी भी है, कुछ चाहिए भी, सब है। वो तो एक एक के लिए भगवान ने लिखा है, लेकिन हम लोग क्या है, चारों है। हम लोग थोड़े दुखी है और थोड़ा चाहते भी, गिरधारी थोड़ा देखिएगा हमारा धंधा बंदा ठीक करिए, थोड़ा अर्थ भी चाहिए और ज्ञान भी है कि हाँ आप कृष्ण है, ये जगत है, मैं जीव हूँ, ज्ञानी भी है, सब है हम लोग। वो एक एक नहीं है, सारो गुण विद्यमान है पूरा के पूरा। तो भगवान स्वागत करते हैं कि उदार सर्व ये वे थे, गीता में कहते आप सभी उदार हो, मेरी शरण में आए हो, ओके चलेगा। तीव्रण भक्ति चाहे कुछ भी कामना हो न हो वो बात नहीं है, शरण में आना चाहिए, क्योंकि अंत का सार तो यही है, माम एकम शरणम। तो वो तुम कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन भय से भजन होता है या फिर कुछ चाहिए इसलिए होता है। जो ब्रजवासी यशोदा या राधा रानी या कृष्ण के प्रेमी ब्रज के वासी जो शुद्ध प्रेम करते थे कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, मैं सुन रहा था प्रभुपाद जी का राधाष्टमी का लेक्चर, तो एक प्रश्न पूछ रहे थे लेक्चर में उन भक्तों को कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत संघ का क्या उद्देश्य है। तो लोग चुप थे, क्या उत्तर है, प्रभुपाद पूछ रहे तो कुछ ना कुछ तो सरल ऐसे पता है, कृष्ण प्रेम कहेंगे या हरिनाम कह दो, कॉमन उत्तर 10-12 फिक्स है, लेकिन फिर भी कुछ विशेष ओके प्रसंग पर पूछा जा रहा है तो सोचना पड़ेगा ना, तो क्या मीन्स क्या है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स हरितोषणम, बस कृष्ण को प्रसन्न करना यही है कृष्ण भावनामृत संघ। और वो कौन है इसमें मास्टर, कौन है, राधा रानी की वो उसमें सुपीरियर है, श्रेष्ठ है, उसको पता है कि इनको क्या कब कैसे क्या चाहिए, कैसे ये खुश होते हैं, इसलिए क्रोध करती है, उसको पता है क्रोध करने से ही खुश होंगे, इसलिए मान करती है, स्नेह मान प्रणय भाव मान जो भी है वो सब कृष्ण की प्रीति संतुष्टि के लिए ही है राधा रानी का। उसमें वो माहिर है, उसमें वो एक्सपर्ट है राधा रानी, उसमें कोई शंका नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे स्वयं आने का हेतु ब्रज प्रेम राग भक्ति देने के लिए है, और ये कोई सब लोग नहीं समझ पाते हैं। लोग चर्चा करते हैं, हम सुनते हैं अन्य अन्य जगह चैतन्य महाप्रभु कितने शुद्ध भक्त है, जो कितने संकीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया है, वे लोग ये नहीं जानते कि वो स्वयं कृष्ण है। और कुछ लोग ये जानते हैं कि वो स्वयं कृष्ण है, तो वो ये नहीं जानते कि राधा का हृदय लेकर आए है, राधा भाव दूति सुवलित, वो तो कुछ ही लोग जानते गौड़ वैष्णव है ना। इसलिए चैतन्य चरितमृत में कविराज जी ने एक बड़ी बात लिखी है, उल्लू के ना देखे यत सूर्य, जैसे उल्लूक होता है ना आउल, वो सूर्य नहीं देखता है, उसको सूर्य नहीं देखता है, ऐसे ही जो अभक्त है वो नहीं समझ पाएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे इस तत्व को। लेकिन वास्तविकता क्या है, क्योंकि ये राधा और कृष्ण एक हुए हैं, राधा कृष्ण प्रणय विकृत आलादनी शक्ति रस्मात, वो दोनों शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान और राधा पूर्ण शक्ति, यही भेद यही प्रमाण शास्त्र का यही प्रमाण है कि राधा कृष्ण सदा ये छे एक ही स्वरूप, लीला आस्वादने धरे दुई रूप, वो एक ही है, लीला आस्वादन के लिए दो बने हैं, शक्ति शक्तिमान है, लेकिन क्यों? देकात्मा भूविपुरा देह भेदम गतो, तो वो पहले दोनों अलग अलग थे गोलोक वृंदावन में, जैसे भी बात कर रहे थे हम पुरुषोत्तम महाराज की कथा से कि गोलोक में प्रकट हो गई उसको आनंद देने के लिए रासलीला के लिए और राधा रानी गोलोक वृंदावन में कृष्ण से ही, और उसके बाद रास आनंद होता है ही है नित्य लीला वहां की, लेकिन यहाँ पर कारण बताया जा रहा है कि वो दोनों अलग अलग रस आनंद नित्य गोलोक वृंदावन में लेते रहते हैं, लेकिन चैक्य आख्य प्रकट दुना, लेकिन इस समय कलयुग में वो दोनों एक बन गए। राधा भाव द्रुति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, वही राधा कृष्ण एक बन के राधा भाव और क्रांति को लेकर गौरांग श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बने हैं। चैतन्य महाप्रभु को समझेंगे ना तब राधा रानी को समझेंगे, क्योंकि वो राधा रानी से अलग नहीं है। और उनकी ये जो अभी हम लोग देख रहे थे राधा फेस्टिवल, सभी लोग कीर्तन कर रहे थे, सुधांशु प्रभु करा रहे थे, वो कह रहे थे कृष्ण प्रेम में सब मत हो गया। वास्तव में लिखा है कि ये जो संकीर्तन है ना वो रासलीला से अभिन्न नहीं है, ये संकीर्तन गोलोकेरो प्रेम धन है जो महाप्रभु लाए हैं। उधर क्या है, हरिनाम संकीर्तन ही वहां का धन है जिसको लाने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु है। अनर्पित चरिचिरात करुणया अवतीर्ण कलो, जो कितने युगो युगो से अन्य अवतारों में नहीं दिया था, उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट दिद कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत वसच नंदन। सीधा अर्थ बताया गया है कि वो लेकर आए प्रेम, ये जो हरिनाम संकीर्तन और रासलीला से अभिन्न, ये करते करते वो शुद्धता वो साधना और सिद्ध अवस्था में वही प्राप्त होगा चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। निरपराध नाम लय, जब ये अवस्था शुद्ध नाम के स्तर की आएगी तो सिद्ध देह में होगा, जो हमारा लक्ष्य है गौड़ी वैष्णव का मंजरी स्वरूप। इसीलिए प्रारंभ से समझाया जा रहा है कि आलादिनी कराए कृष्ण रस आस्वादन, ये आलादिनी शक्ति है वो कृष्ण को रस आस्वादन कराती है, और आलादिनी द्वारा करे भक्ति रपोषण, और ये जो हम लोग भजन भक्ति थोड़ा कर रहे हैं ना, हम नहीं कोई भी कर रहा है ना कृष्ण की, वो राधा रानी की कृपा का अंश ही उसमें गया है, अन्यथा हो नहीं सकता, क्योंकि भक्ति भी अतरंगा शक्ति का विलास है, उनका अंश है। यहां तक स्पष्ट समझिए, कृष्ण अन्य अन्य राम नरसिंह वरा वामन अवतार लेते हैं, ब्रह्मा जी ने गाया है रामादि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठम, उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने उसी ब्रह्मी संहिता में गाया है आनंद चिन्मय रसा प्रतभाविता भी साधीर्य एव निज रूपतया कला भी गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजा। ये जो आनंद चिन्मयी शक्ति है गोलोक वृंदावन में जो नित्य है वो भी अलग अलग प्रकट हो जाती है, कैसे? अब वही महिषी गण द्वारिका की 16108 रानियां, उस गोपी गण का ही तो काय व्यू है, और उसके बाद विष्णु सहस्त्र सेवमानम लक्ष्मी सहस्त्र जो वैकुंठ में हजारों लक्ष्मियां सेवा करती है, वो भी तो उस महिषी गण का ही अंश विलास है। जैसे कृष्ण राम नरसिंह बरा बनते हैं ना, ऐसे ही श्री जी राधा रानी कृष्ण आनंद सेवा के लिए वो महिषी गण 16108 आने वही गोपिया बन जाती है। एक ही इनकी लीला है, उनका प्रभाव प्रकाश या वैभव विलास। अब प्रभाव प्रकाश किसको कहते हो, पढ़िएगा कभी कि कहा वैभव विलास क्या है, प्रभाव क्या है, वो भी ये सब चैतन्य चरितामृत में है, कोई अलग नहीं है। थोड़ा ऊंचा है लेकिन सरलता से अगर ध्यान दे और कोई समझाने वाला तो बहुत सरल है, क्योंकि ये हमारे स्वाभाविक वृत्ति है, हम भी सच्चिदानंद है, और ये सच्चिदानंद तत्व समझना ये हमारा स्वभाव स्वरूप अधिकार भी है, और वो सरल होगा अगर हम उस अवस्था में हो। अगर शरीर बुद्धि में रहेंगे देहात्म में तो असंभव और अशक्य और मुश्किल सब भी, लेकिन अगर आत्म अवस्था में स्थित है और सेवा अपने स्वरूप में अर्थात स्वरूप है सेवा कृष्ण रदास उसमें वो स्थित है तो उनके लिए ये सरल भी हो सकता है, यही गहरा गहन तत्व इसी हो सकता है। लेकिन हम सार रूप में व्याख्या करें इस तत्व के अनुसार तो कृष्ण की जो आह्लादिनी शक्ति आनंद देने वाली और उन्हीं के शरीर से प्रगट और वो मूर्तिमती रूप ली श्री राधा गोलोक वृंदावन जो विहार करती, और कृष्ण प्रकट होते हैं तो वे शक्ति भी प्रकट होती है, और कृष्ण भी उस राधा रानी कृष्ण से कितना प्रेम करती है। श्री राधा या प्रणय महिमा की दृश्योवान, ये बात राधा रानी कृष्ण के प्रेम की महिमा में कितनी मस्त है ये जानने के लिए, फर्स्ट रीजन, पहला कारण। और दूसरा, चौख्यम साक्ष्यम मद अनुभवत की दृश्योवा मदीय, और मुझे प्रेम करके मेरे इस सेवा में वो कितना सुख लेती है, उसे क्या आनंद मिलता है। और दूसरा है कि मेरे इस माधुर्य में, क्योंकि कृष्ण का जो माधुर्य है ना, माधुर्य भगवत्ता सार व्रजे कैला प्रचार तार कैला व्यासनंद, व्यास जी ने ये माधुर्य भागवत में वृंदावन में ही है। दो बात वृंदावन में विशेष है, एक माधुर्य और एक परकिया, परकिया भाव रति व्रजे रति उल्लास, ऐसा है ना कुछ, व्रजे बिना अन्यत्र नहीं भाग, व्रज के बाहर ये नहीं है, ये परकिया रस। और दूसरा कृष्ण का पूर्णतम माधुर्य, ये भी केवल वृंदावन में है। और ये माधुर्य जो है वो समस्त भगवत्ता का सार है, ऐश्वर्य का, और उसको केवल ब्रज में प्रचारित किया, और इस भाव से परिपूर्ण है श्री जी किशोरी जी, और उस माधुर्य आस्वादन में उसे क्या मिलता है ये जानने के लिए सची गर्भ सिंधु हरिंदु, सची गर्भ से वही कृष्ण गौरांग बन के आए। तो बस इतना ठीक है, नहीं तो कुछ तत्व के विषय में बताया जा रहा है तो बहुत शक्ति है, तीन मुख्य है, जीव तटस्थ जिसको कहते हैं, अतरंग और बहिरंग, अतरंग में भी तीन, आलादिनी संवित संदिनी, उसमें भी आलादिनी मूर्तिमती श्री राधा, और इसके अंतर्गत चैतन्य चरितामृत से कुछ कुछ प्यार जो इससे संबंधित है वो हमने आपको सुनाए। इस सारी बातों से एक बात स्थित होती है कि कृष्ण राधा विभेद नहीं है, अभिन्न है, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, जैसे उपनिषद उसके विषय में कहता है पूर्णम अदम पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णम, वो सब श्री जी के लिए भी है क्योंकि एक ही है। प्रभुपाद ने लिखा है कि कृष्ण के समान ही पूर्णत दिव्या है राधा रानी, चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में कृष्ण के समान ही पूर्णत दिव्य है श्री जी राधा रानी। तो हम गौड़ीय वैष्णव राधा रानी के विषय में इस तत्व को समझते हैं, लेकिन हम अपने स्वयं फिर से इसका दोहराया, आप जानते हुए जानते थे फिर भी, क्योंकि अपनी वाणी को मन को आत्मा को शुद्ध करने का इससे और श्रेष्ठ उपाय और सरल उपाय और कोई नहीं है। क्योंकि रामानंद राय ने गोदावरी के तट पर पूछा है श्रवण एर मध्य कौन श्रेष्ठ, श्रवण के बहुत सारे विषय है, उसमें श्रेष्ठ श्रवण क्या है, राधा कृष्ण युगल लीला, इनके दोनों के विषय में सुनना, इससे श्रेष्ठ श्रवण और कुछ नहीं। लेकिन आप लोग कहोगे कि अधिकार अधिकार, उसकी बात हमने पहले ही कर दी कि क्या अधिकार, ठीक है अधिकार नहीं है, हम लोग माया में है बद्ध है, लेकिन मुक्त होने के लिए उपाय भी तो यही है श्रवण कीर्तन, उपाय भी तो यही है ना कि कुछ ना कुछ आस्वादन किया जाए, और दूसरा नहीं, जो हमारी परंपरा के आचार्यों ने लिखा है वह तो सुना पड़ा जाए कहा जाए, ये तो करना चाहिए हमारा, क्योंकि तुष्यंति च रमंति च, भक्तों का ये स्वभाव गीता में भगवान ने बताया है। तो अब हम कुछ तत्व से बाहर निकलकर, राधा तत्व के चैप्टर से बाहर निकलकर कुछ राधा जन्म प्रकरण में प्रवेश करते, गोलोक में तो प्रकट करा दिए लेकिन पृथ्वी पर कैसे प्रकट हुई, क्योंकि गोलोक में तो प्रकट है लेकिन हमारे लिए कौन सी राधा रानी, जो पृथ्वी वाली कृपा करने पृथ्वी वाली, जो एक ही है मतलब दो नहीं, आप ये मत समझना कि ये प्रभु जी क्या बता रहे वो कोई अलग है, लेकिन जो राधा रानी पृथ्वी पर प्रकट हुई हम लोग को कृपा करने के लिए, आज के दिन भाद्र शुक्ल अष्टमी है, श्रीधाम ब्रज 84 कोष के 12 मुख्य वनों में एक है महावन, महावन गोकुल, और उसके अंतर्गत पवित्र गांव रावल जो यमुना के तट पर ही है मथुरा से बिल्कुल नजदीक, और उस रावल धाम जो है वो कीर्तिदा जी का मैयर है, और उसका विवाह श्री वृषभानु जी से हुआ था जो बृहत सानु बरसाना के राजा थे, कीर्तिदा जी का विवाह हुआ था वृषभानु बाबा से। पुराणों में प्रसिद्ध कथाएं हैं इस विषय में कि सूर्य भानु नाम के गोप थे और वे चाहते थे कि गोलकेश्वरी रसेश्वरी हमको पुत्री रत्न के रूप में प्राप्त हो। श्रीधाम ब्रज 84 कोष में एक श्रीमंत प्रसिद्ध राजा थे जिसका नाम था महाभानु। क्या नाम था? महाभानु। वो गोप जाति थे लेकिन किंग थे वो ब्रज के। और उस महाभानु के 5 पुत्र थे, चंद्रभानु, रत्नभानु, वृषभानु, सुभानु, प्रतिभानु। उसमें जो ये तीसरे है ना वृषभानु, महाभानु के उसमें जो वृषभानु, वही तपस्या करके जो पूर्व जन्म के सूर्य भानु थे वही वृषभानु बने। और ऐसा लिखा है कि उन्होंने 100 राज सूर्य यज्ञ किए। बड़े ही सरल थे, इंद्रिय जीत भी थे और महान वैष्णव राजर्षि थे। कौन? वृषभानु बाबा। राधा रानी के पिताजी की बात हो रही है। और वे वृषभानु बाबा का विवाह हुआ कीर्तिदा महारानी से। एक उसी ब्रज 84 कोष में एक श्रीमंत गोप थे, धनवान और पवित्र परिवार के, जिनका नाम था बिंदु और उनकी भारिया पत्नी का नाम था मुखरा। बिंदु और मुखरा से 5 संतान हुई और 3 पुत्रियां हुई। 5 पुत्र और 8 संतानें हुई जिसमें 5 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। किसकी? मुखरा की, बिंदु की, जो एक गोप थे ब्रज 84 कोष में। और उसके भी नाम दिए गए हैं भद्र कीर्ति, चंद्र कीर्ति, महाकीर्ति, ये सब मुखरा की पुत्रों के विषय में लिखा है। श्रीदाम और महाबल, 5 पुत्र और 3 पुत्रियां, भानु कीर्ति, कीर्तिमती और छोटी लड़की थी कीर्तिदा। और इस कीर्तिदा जी का पाणी ग्रहण हुआ उस महाभानु के पुत्र श्री वृषभानु बाबा। जय जय वृषभानु कीर्तिदा सुंदरी, जय पूर्णमासी जय अभीर नागरी। वृषभानु बाबा की। और दोनों का विवाह हुआ। इसके लिए विवाह में भोजन होता है, आपको 12 बजे के बाद मिलेगा। राधा रानी के माता पिता का विवाह प्रसंग कराया जा रहा है तो दोपहर को प्रसाद है, लेकिन वो विवाह सेरेमनी पूरा होने के बाद, क्योंकि वर्जन में भी करा दिया जाएगा। ये दोनों पवित्र ऐसे शाश्वत माता पिता है श्री जी के, राधा रानी के, वृषभानु बाबा और कीर्तिदा महारानी। और वे कई वर्षों तक कई तीर्थ यात्रा किए, तप किए, व्रत किए, उपवास किए, लेकिन उनको संतान नहीं हो रही थी। ब्रह्मांड पुराण में ये कथा है, उत्तराखंड में। ऐसे राधा रानी के जन्म के विषय में कई सारी कथा है कल्प भेद के अनुसार। कुछ कुछ जो अप्रमाणित है और हमारे आचार्य के द्वारा है उसको हम बता रहे हैं। और उसने फिर बहुत व्रत तप किया, लेकिन एक बार कीर्तिदा जी ने कहा कि हमारे ब्रज में ही तो देवी है कालाइनी, जो प्रसिद्ध है गंगा यमुना के तट पर, उनसे ही कामना प्रार्थना की जाए। और बाबा ने सुन ली, वृषभानु जी ने तप व्रत किए, मौन रहकर उपवास कर रहे थे यमुना तट पर। उसी समय एक गंभीर आकाशवाणी सुनाई दी वृषभानु बाबा को। वो तो मौन थे, मौन मंत्र जप रहे थे, कुछ ना कुछ, कौन सा जप रहे थे वो नहीं लिखा, सीक्रेट, लेकिन जप रहे थे वो लिखा है। तो फिर क्या जप रहे थे? लेकिन वो आकाशवाणी ने कहा, हरि नाम विना वत्स कर्ण शुद्धि न जायते, तस्मात् श्रेयस्करम राजन हरेर नामानु कीर्तनम। हे वत्स, भगवान के पवित्र मंगलमय नामों से श्रेष्ठ और कोई पूजा मंत्र तंत्र तंत्र कुछ है ही नहीं। इसीलिए तस्मात् श्रेयस्करम राजन, हे राजन, सबसे श्रेयकारी साधन है हरि नाम, हरे नामानु कीर्तनम, तुम उसका आश्रय लो, छोड़ो ये सब। तो वृषभानु बाबा यमुना तट से निकल गया आगे। वहां एक कर्तु मुनि का आश्रम था, कर्तु मुनि यमुना के तट पर, उनके शरण में गए और निवेदन किया पूरी घटना का। तो उन्होंने कहा कि सही बताया, हरे नामानु कीर्तनम से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो बोले हरि के तो बहुत नाम है, कौन सा मंत्र? हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। कलि संतरण उपनिषद में भी है और ब्रह्मांड पुराण में भी है यही मंत्र, और उसके बाद वही श्लोक, इति षोडक्षर नामना कलि कल्मश नाशनम नात परतरो उपाय सर्व वेदेशु। इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। अच्छा, बाबा ने मंत्र जाप चालू किया और उसी समय कात्यायनी प्रकट उनके सामने हो गई और एक लंबचौरस गोल्डन पेटी प्रदान की, चमकती हुई जो सूर्य के समान चमक रही। बाबा उसको लेकर घर आए, रख दी और उसी के फल स्वरूप उसी घर में उसी धाम श्री रावल में ऋषभानु और कीर्तिदा जी के आंगन में श्री किशोरी जी मूर्तिमान प्रकट हो गई बाल लाली के रूप में। उस पेटी से नहीं, ऐसे ही उस व्रत तप व्रत जो भी किया था उस मंत्र जप के फल स्वरूप। अब कुछ महात्मा ब्रज वृंदावन में उस रावल धाम के और ब्रज के विदुषी विद्वान, जिसको कहा जाए विदुषी विद्वान, वे बताते हैं कि हाँ भैया एक बात सत्य है कि ऋषभानु बाबा यहाँ आए थे रावल में बरसाना से और कीर्तिदा जी यहीं थी उस समय, लेकिन उस यमुना, उस समय यमुना बाजू में थी, आज तो यमुना उस घर से दूर है थोड़ा, आप रावल अगर जाएंगे राधा जन्म स्थान पर, लेकिन उस समय तो बिल्कुल नहीं। और बाबा उसमें स्नान कर रहे थे ऋषभानु बाबा और गायत्री जयंती जप कर रहे थे, उसी समय एक सहस्त्र पंखड़ियों से खिला हुआ तेजोमय कमल आया बहता बहता यमुना जल में और बाबा के शरीर को छो गया, छुआ। बाबा ने कहा कौन टच कर रहा, सुप्त कमल था एकदम, और देखा तो उस कमल में चंपक लता सुवर्ण वर्ण की एक तेजोमय लाली जो अपने हाथ पैर हिला रही। बाबा को ये देखो ये अयोनी जाए ऐसे तो पता चलता है राधा रानी का जन्म कमल के ऊपर प्रकट हो गए। और बाबा ने उसको लिया और कीर्तिदा जी को दिया। राधा रानी के जन्म विषय में ब्रह्मांड पुराण की ये कथा, ब्रज के प्रसिद्ध वहां के विद्वानों का यह मत, और आइए अब विचार करते हैं हमाचार्य श्रीपाद उपगोस्वामी राधा जन्म के विषय में श्री ललित माधव में जो व्याख्या करते हैं कि विंध्य नाम का पर्वत। ऐसे तो पूर्णमासी जी गर्ग की पुत्री गार्गी को यह कथा सुना रही है ललित माधव में राधा रानी के जन्म प्रकरण के अंतर्गत। राधा जन्म भी दिव्य है, जन्म कर्म च, तो इनका भी च, च मतलब तथा होता है, और तो कृष्ण का भी च दिव्यम, तो यहां भी दिव्य ही है। वो तो बड़ी सुंदर कथा है, वैष्णव जानते हैं लेकिन समझना भी है, आनंद भी लेना है लीला में। वो विंध्य पर्वत था और उनको थोड़ा ईर्ष्या था कि ये हिमालय पर्वत की पुत्री पार्वती और उसका पति शिव और वो महादेव, मैं भी ऐसी पुत्री प्राप्त करूंगा जिससे मैं जमाए उस महादेव जो इस हिमालय के जमाए को युद्ध में फाइटिंग करके हरा दे। देखो अभी कैसी कैसी बातें चल रही है। विंध्य है ना बहुत बड़ा पर्वत, हिमालय से भी बड़ा। एक बार उसने विंध्य पर्वत में बढ़ना चालू किया तो सूर्य चंद्र की गति को अवरोध करने लगा, सब देवता हाहाकार करने लगे। तो अगस्त्य मुनि गए और अगस्त्य मुनि गए तो विंध्य पर्वत में प्रणाम किया झुक कर, तो उसने कहा ऐसे ही लेटे रहो। तो अभी लेटा हुआ है, अगर खड़ा होता ना तो स्थावर नाम हिमालय भगवान को नहीं कहना पड़ता, विंध्य कहना पड़ता। गीता में जो कहा कि हिमालय मैं हूं स्थावरों में, विंध्य बहुत, लेकिन उसको क्या कर दिया भगवान ने, अगस्त्य मुनि ने बोला ऐसे ही यही आशीर्वाद है कि ऐसे पड़े रहो, डिस्टर्ब कर रहे हो सबको। ऐसा लगता है कि विंध्य की थोड़ी प्रकृति ऐसे ही स्वाभाविक रही होगी, कुछ बढ़ने की, कुछ बढ़ाने की, कुछ दिखाने की। और उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और दान मांगा कि मैं ऐसी पुत्री चाहता हूं और मेरे पुत्री का जमाए, मेरा जमाए राजा, माय सन इन लॉ, इतना वीर बने कि महादेव को भी युद्ध में परास्त करे। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, आनंद में आ गया। ब्रह्मा भी चले गए, फिर विचार करने लगे। ब्रह्मा भी कभी कभी तथास्तु कहने बोलने के बाद विचार करते, अरे मैं बोल तो दिया लेकिन महादेव को कोई हरा ही नहीं सकता, महादेव तो महादेव है, युद्ध में उसको कौन परास्त कर सकता है। हाँ, ब्रह्मा जी का चार है ना, एक में से लाइट, एक में से हुआ कि हाँ कृष्ण अभी प्रकट होने वाले हैं और कृष्ण जो सुप्रीम, वो महादेव को परास्त, तो वो प्रकट होंगे तो उनकी शक्ति है, उसकी इटर्नल कॉन्सेप्ट, उनकी अतरंग प्रिया भी तो प्रकट होगी और उसको ही विंध्य की पुत्री बना देते हैं। लेकिन उसके हाथ में थोड़ी था, ये कोई थोड़ी जीव जगत की बात है, वो उस ब्रह्मा को बनाने वाले हैं
उस विषय की बात है। ब्रह्मा जिसको मैन्युफैक्चर करता है 84, उसके अंदर तो ये जीव है नहीं, वो तो परे है, तो वो थोड़ी ऐसे बना सकते हैं। ब्रह्मा सबको बना सकते हैं लेकिन कृष्ण को नहीं, उसको बनाने गए तो खुद ही बन गए, ब्रह्म विमोहन लीला है ना। खुद ही बन गए। उसको काम नहीं कर रहा था फिर, ऐसा क्यों हो रहा है, इधर भी है उधर भी है। हाँ, यतो ततो दिखा दिया, बाहिरे अंतरे नरसिंगा, सब जगह दिखा दिया ब्रह्मा को ना, तो है। तब प्रार्थना एवं प्रयोजनम, बस प्रार्थना ही काम करेगी। और उसने प्रार्थना की श्री जी से, तप किया, राधा रानी प्रकट हुई, उसको एग्री, उसको मना लिया कि आप कृपा करके विंध्य की पुत्री के रूप में आइए, मैं उनको वरदान दे चुका हूँ, मेरी लाज रखिए, नहीं तो आगे चलकर कोई हमारा व्रत तप नहीं करेगा, हमारा मार्केट थोड़ा ढील हो जाएगा, आप सर्किट थोड़ा ऊपर रखिए श्री जी, ताकि आगे चलकर मैं कहीं तथास्तु तथास्तु कहता रहूं तो लोग माने। और श्री जी प्रसन्न करुणामयी है, मान गई। और रूप गोस्वामी पूर्णमासी जी गार्गी को कह रही है कि आदेश दिया योग माया को राधा रानी ने कि तुम उस कीर्तिदा जी के गर्भ में जब मैं प्रकट होंगी उसके पहले उठाकर विंध्य पर्वत की पत्नी के गर्भ में हमको डाल देना, तुमको तो ये प्रैक्टिस है बलराम अवतार से लेकर, तुम्हारा ये तने फावट वालो धंधो था तो बिजनेस फावे तुमने कोकना गर्भ में कोक में, ये और कोई नहीं कर सकता, तुम कर सकती हो, वो उन्हीं की शक्ति विलास है, योग माया कोई अलग थोड़ी है। राधा रानी समस्त शक्ति का स्रोत तो वही है राधा रानी, बहिरंगा अतरंगा जो भी शक्ति आप वर्णन करो मूल तो वही है, जैसे सर्व अवतारी मूल कृष्ण है, ऐसे समस्त शक्तियों का स्रोत श्री जी है राधा रानी है। और फिर योग माया ने जो वहां पर यहाँ कंस में जन्म लिया था, कंस के यहाँ देवकी के गर्भ से, वसुदेव के यहाँ कंस की जेल में, और वसुदेव जी जिस यशोदा पुत्री को लाए थे और कंस जैसे मारने फेंका उसको, तो त्रदस्य तनुजा अदृश्य तनुजा विष्णु अष्टा भुजा, हाँ वो आकाश में उड़ गई और अष्ट भुजा वाली सिंह वाहिनी हो गई और कहा तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। और उसी समय बताया कि 8 महाशक्तियों ने भी जन्म लिया है और उसके साथ जिसका विवाह प्रेम होगा ना वही तेरा काल होगा। तो चाइल्ड किलिंग कमेटी की जो डायरेक्टर थी पूतना मौसी, उसको ईमेल करके फटाफट बुलाया उसको कि कहां जहां कहीं भी हो यहां आ जाओ, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म अनाउंस कर आप जहां कहीं भी हो यहां उपस्थित हो जाओ, ऐसे ही उपस्थित करो। और पूतना जी को ये अनुभव था, उसका ये बिजनेस था। बाल पूतना घोरा बाल घाटिनी, रूप सुखदेव जी ने कहा। और वो गई विंध्य पर्वत पर, वहां पर उत्सव चल रहा था, जन्म ले ली थी और उसका संस्कार होता है ना, तो उत्सव संस्कार सेरेमनी, हाँ संस्कार विधि होता है, और ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे थे और उस दोनों को लेकर चली गई पूतना। चंद्रभानु की कन्या को भी ट्रांसफर किया गया था योग माया के द्वारा, और वृषभानु की कन्या को भी ट्रांसफर कर दिया था योग माया ने उस विंध्य पर्वत की पत्नी के गर्भ में, और उसको पूतना दोनों को उठाई, दोनों शक्तियों को जो चमक रही थी। लेकिन विंध्य ने देखा ये कौन राक्षसी ले जा रही है हमारी पुत्री रत्न को, और उसी समय ब्राह्मण को कहा मंत्र पढ़ो, मंत्र में बहुत बल है, और उस मंत्र के प्रभाव से पूतना का राक्षसी पना कम करो। और मंत्र पढ़ने उस मंत्र के प्रभाव से पूतना शक्तिहीन होने लगी और उनके हाथ से वो छूट गई एक कन्या, जो विदर्भ देश में राजा भीष्म के राज्य की नदी में गिरी और उसको भीष्म जी के पास पहुंचा गया, 5 वर्षों तक वही रही। उसके बाद जांबवान कभी गोवर्धन में आते थे, कभी विंध्य पर्वत में आते थे, वो तो सत्युग से है जांबवान, और जांबवान के विषय में आप सुने होंगे रामायण के जांबवान। उसने कहा है कि भाई पर्वत अभी क्या है, सीता जी सामने कूद के जाओ और लेके आओ सीता जी का पता। तो जांबवान ने कहा मैं जब पहले था ना सत्युग में, बड़ा जब युवान था ना, जुआन यम युवान, तब वामन भगवान ने जो 2 पैरों से पापा ना, तो 3-4-7 परिक्रमा कर दिया था पूरे विश्व की। तो बोले अरे, अंगद ने बोला तब तो ये समुद्र आपके लिए क्या है, गोपद है एकदम। बोले उस समय में बोला ना जुआन था, अभी बूढ़ा हूं तो अभी नहीं हो सकता, तो अभी सॉरी ये तो हनुमान करेगा होगा, वो जामवान तब से और कृष्ण लीला में भी जांबवान है, भगवान ने उसको बढ़िया से धुलाई की थी। जांबवंती प्रकरण में आप सुने होंगे, 27 दिन तक इतना मारा जांबवान को, जांबवान को 27 दिन में बुद्धि खुली कि हमको कोई मार नहीं सकता, ये मार रहे मतलब वही मेरे स्वामी है। लेकिन तब तक उनकी साइज बढ़ गई थी, ढोकड़ा दे गया था, वो जी गया था, गुजराती में बोले थे ढोकड़ा दे गया, मारी मारी भगवान ने खूब मार। ससरा ने लगन पहले जरा देखकर ने देखो कृष्ण का लीला देखो, अब एक दूसरी तरफ से विचार करो तो अरे शादी के पहले ससरा जी को अभी फिर प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद दो, नव दंपति यही होंगे जांबवंती के साथ, कृष्णा इज कृष्णा इसलिए उसको कहा अद्भुतम, उनकी लीला ही अद्भुत है, कोई भी कैसे भी समझ में नहीं आता। तो वही जांबवान को विंध्य पर्वत ने कहा कि लेके आओ उस कन्या को जो गिरी है, हा? तो वहां जांबवान ने पहुंचाया, और दूसरी कन्या जो मंत्र जाप हो रहा था ब्रज में पहुंची पूतना और उस यमुना के प्रवाह में गिर गई, जिसको मुखरा जी ने उठाया, पूर्णमासी ने उठाया रूप गोस्वामी कहते, और मुखरा को दिया, उसने कहा यही तुम्हारे बेटी की लड़की है, इसको संभालो और प्रदान कर दो। तो रूप गोस्वामी ने ललित माधव में राधा रानी के प्रागट्य को ऐसे बताया है, जैसे भी हो चाहे ब्रह्मांड पुराण की कथा हो, ब्रज के शास्त्रों की कथा हो, या हमारे आचार्यों की कथा हो, राधा रानी का प्रागट्य इतना तो समझ में आता है कि दिव्य है और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रकट हुई है, कृष्ण की सेवा करने के लिए प्रकट हुई है, इतना तो सामने आता है हम वैष्णवों के। और वे राधा रानी बृहत सानुपुर, क्योंकि ब्रह्मा जी के विषय में एक कथा और भी आती है, आप सुने होंगे बरसाना के, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे किशोरी जी, दास को इतना सेवा दीजिए कि आप जहां पदार्पण करेगी, जहां लीला करेगी अपनी सखियों के साथ कृष्ण के साथ, वहां मेरा भी कुछ योगदान हो। और वही ब्रह्मा जी बरसाना में ब्रह्म पर्वत बने हैं, जिनके चार शिखर है ना, दानगढ़ मानगढ़ बिलासगढ़ वो सब, वो वही ब्रह्मा जी है जो पर्वत के रूप में, जिस पर किशोरी जी नित्य अपना बचपन खेली है ना। राधा रानी अपनी सखियों के साथ बरसाना में अपने ब्रजभानु बाबा के आंगन में बहुत सारी लीलाएं की है गह्वरों ने, तो ब्रह्मा जी को वो सौभाग्य दिया है श्री श्री जी ने। तो वे ब्रजभानु बाबा के घर में पली बड़ी बड़ी हो रही है, जन्म के प्रकरण में बड़ी मधुर कथा है कि है ही सुंदर और तप्त कंचन वर्ण सुवर्ण चंपक के फूल के समान, चंपा के बहुत कुछ इसकी कांति के विषय में, शोभा के विषय में, सौंदर्य के विषय में शास्त्रों में संतों ने विवरण दिया है। लेकिन एक आश्चर्य देने वाली बात है कि वो आंख नहीं खोल रही थी, डिफ एंड डम एंड ब्लाइंड ऑल्सो शीज, वो आंख भी नहीं खोल रही, सुन भी नहीं रही। इसलिए कीर्तिदाजी थोड़ी चिंतित थी कि पुत्री प्राप्त तो भी मधुर हुई है, लेकिन पता नहीं अंधी है क्या, समझ में नहीं आता। राधा रानी जन्म ली लेकिन नीचे अष्ट जैसी थी, ऐसा वर्णन है। और विशेषकर श्री नारद जी जब पधारते हैं, पहले तो नंद भवन में जाते हैं, लाला का गुणगान गाते हैं, वाह नंद जी तुम्हारा लाला तो इसके जो प्रेम करेगा वो जन्म मृत्यु से छूट जाएगा, श्री ब्रह्मा भी इनके दर्शन करने के लिए आएंगे, इतना सुंदर लाला है। लेकिन फिर नारद जी को एक बात दिमाग में आई कि अगर लाला आया है तो लाली तो कहीं ना कहीं आई ही होगी, क्योंकि लाला बिना लाली के तो कुछ करता नहीं, शक्तिमान बिना शक्ति के तो कुछ कर, तो ढूंढो यही कहीं होनी चाहिए। और ब्रज में ढूंढ रहे नारद जी, ढूंढते ढूंढते पहुंच गए बरसाना, और न उसी ब्रजभानुपुर में महल में, वे तो राजर्षि थे ना, सब विधि विधान जानते, नारद जी के स्वागत सत्कार प्रणाम पूजा सब हुआ। और उसने कहा कि आप तो बड़े प्रसिद्ध राजा हो, आपके संस्कार बता रहे, इसीलिए तीनों लोकों में आपका यश फैला हुआ है, ब्रजभानु बाबा इतने धनी हो, इतने सुखी संपन्न हो, इतने संस्कारी, और फिर भी इतने सरल, ये सारे सदगुण एक साथ होते पर एक साथ है तो मतलब यहाँ कुछ विशेष होना, यहाँ कोई आया है इसीलिए सारे आनंद सदगुण संपत्ति बढ़ रही है। तो उन्हें कहा हाँ एक पुत्र प्राप्त है हमें, लाओ लाओ हमें दिखाओ। और सुंदर पुत्र को लेकर आए जिसका नाम था श्रीदाम, नारद जी ने गोदी में उठाया और उसको छूते ही कहा हाँ ये दिव्य बालक है, ये तो कृष्ण का सखा है, बलराम का मित्र है, और तुम्हारा ये पुत्र तुम्हें बहुत ख्याति देगा, बड़े भाग्यवान हो तुम, इसका पालन पोषण अच्छी तरह करना, कभी इसको मारना दाना नहीं बाबा, नारद जी सलाह दे रहे। तो फिर और कोई, ब्रजभानु ने कहा कि इसकी एक छोटी बहन है लेकिन थोड़ी आंखें नहीं खोलती है। बाबा आप साधु हो, पहले होता था ना लोगों को कि साधु घर में आए कुछ आशीर्वाद दे तो बच्चे का हो जाए, इस बात से हम आपको याद कराना चाहते हैं भक्त, जिस छत छाव के नीचे आप बैठे हो ना छत्र छाया में, इस इस्कान के आचार्य प्रभुपाद जी के पिताजी गौर मोहंडे जिस वैष्णव को अपने घर लाते थे या मिलते थे तो सारे वैष्णव से बस रिपीट इन रिपीट एक ही बात कहते थे कि आप हमारे अभय को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वो राधा रानी का शुद्ध भक्त बने। सभी से पिताजी गौर मोहंडे सबसे ही आशीर्वाद मांगते थे, जो भी वैष्णव मिलते थे, हमारे हमारे अभय को आप आशीर्वाद दीजिए कि वो क्या बने, राधा रानी का शुद्ध भक्त बने। और फलीभूत हो ही गया आशीर्वाद, राधा रानी की कीर्ति को, कृष्ण प्रेम की ध्वजा को पूरे विश्व में लहरा दिया प्रभुपाद जी ने संकीर्तन मूवमेंट को। तो ये पिताजी का कर्तव्य स्वाभाविक, हम गांव में देखते हैं कि वे चाहते हैं संतों से कि बालकों का कुछ उज्जवल भविष्य हो, प्रगति हो, ऐसा। और सभी वो सत्य है, किसी सच्चे संत के चरणों में झुकाया हुआ माथा है ना ये सर, वो यहाँ की रेखा बदल देता है, अक्षर मिटा देता है, गिरने वाला लिखा होता है और बढ़ जाता है, उल्टे हो जाते हैं। हम देखते ना ऑफिस में वो रबर स्टैंप जो होता है उसमें वो उल्टा लिखा होता है और लगाते तो सीधा पड़ता है, ऐसे यहाँ सब उल्टा है। प्रभुपाद जी के जैसे संतों के चरणों में झुकेंगे ना तो सीधा हो जाएगा, नंबर सीधा हो जाएगा। हमारी ये जो भाग्य की रेखा सारी उल्टी पड़ी हुई है, लेकिन वैष्णव में चरणों में झुकाने पर वो स्टैंप सीधा लगेगा तो सीधा हो जाएगा। माया की ओर जा रहे हैं, छाया की ओर चले जाएंगे। माया छाया जानते हैं ना, वो भजन है ना, राधा जिन की छाया है, अद्भुत जिन की माया है, तो ये माया छाया। तो माया की ओर गति थी लेकिन कहाँ चली जाएगी, छाया में चले जाएंगे वैष्णव की कृपा से। नारद जी के सामने जब उस सुंदर लाली को लाया गया, बोले चले अंदर, और किशोरी जी एक मखमल के गद्दे पर नीचे सुलाई गई थी एकदम, हाथ पैर हिला रही थी, सुवर्ण बन के पूरे कमरे में प्रकाश बिखर रहा था, ऐसा लग रहा था कि करोड़ों चंद्र उगे हो, इतना प्रकाश। और नारद जी जैसे साधु समझने में कहां देर लगती, और जैसे ही समझ गए कुछ है चमत्कार, जिसको ढूंढ रहा हूं शायद मंजिल करीब है, और उसने जैसे ही छुआ, जैसे उधर नर भवन में कृष्ण को छूने से जो रोमांच कंपा, वही होने लगा इधर भी, समझ गए कि हाँ ये दोनों का कुछ मेल, क्योंकि दोनों के इफेक्ट में भी मेल, उसको छूने में जो मुझे करंट लग रहा था इसको छूने भी वही लग रहा है, मतलब इन दोनों का कुछ कनेक्शन, ये वही है। और उसको उठा के नारद जी ने कहा बड़ा बड़ा भाग्य है कि इसके दर्शन के लिए योगिंद्र मुनिंद्र तरसते हैं, कितना सुंदर लिखा है प्रबोधानंद सरस्वती ने, योगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि, बड़े बड़े योगी मुनिंद्रों के ध्यान में जो मधुसूदन के चरणों के नख की ज्योति नहीं आती, वे कृष्ण राधा रानी के पल्लू से उनके शरीर से बहती हुई हवा को छूकर अपना सौभाग्य मानते हैं कि आई एम द मोस्ट फॉर्चुनेट ऑफ द यूनिवर्स, मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हूं, क्यों, क्योंकि राधा को छूकर हवा मुझे छू गई, लो ये कृष्ण मानते हैं। और वे राधा रानी को आज छूने का अवसर, देखने का अवसर, नारद जी बोले जम के आनंद लेंगे आज। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही छूते हैं कुछ स्तुति विनय अनुनय करने जाए, उसी समय किशोरी, वो तो नित्य किशोरी है भाई, राधा रानी बाल स्वरूप धारण की है लीला में, लेकिन वो नित्य गोलोक में क्या है, किशोर किशोरी, लंदन में प्रभुपाद जी ने नाम दिया इसको किशोर किशोर, नित्य किशोर है, और ये नित्य किशोरी वो नव यौवना हो गई। स्तुति की नारद जी ने बढ़िया से, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ तुम्हारे, और उसकी सखी ने भी, बड़ी सुंदर कथा है, और अंततः फिर दोनों का संवाद स्तुति है। और जैसे ही ब्रजभानु बाबा कुछ लेने गए थे कि आप रुकिए, तब वो आए तो किशोरी जी पुनः स्मॉल छोटी हो गई। इसमें आप आश्चर्य मत करिए, क्योंकि भगवान की अनंत शक्ति संपन्न, सभी शक्तियों का स्रोत, ये कुछ भी कर सकती है। ब्रह्मांड ब्रह्म वैवर्त की कथा भी हमें ऐसे ही आश्चर्य में डालती है, भांडीरवन की जो ब्रह्मा जी ने लीला विवाह कराया उसकी, वो थी छोटी और बड़ी होगी, विवाह हो गया फिर छोटी होगी, बोलो। लेकिन ये सारी कथाएं नहीं सुनाई जाती आज लोगों को, क्यों? क्योंकि वो पहले तो यही नमज समझते कि ये किसकी बात हो रही है, शक्ति और शक्तिमान की, प्रकृति अंतर्गत कर्म भोगने वाले हम जैसे जीवों की चर्चा नहीं है। ये प्रकृति से परे जो राज्य है, उस प्रेम राज्य का ये पवित्र प्रसंग है, जिसमें उनकी योग माया शक्ति विलास अंतर्गत लीला रस सौष्ठव विलास आनंद के लिए अघटन घटन पटीयसी, कुछ भी न होने वाली घटना भी घट जाती है। ये वैदों से हमें समझना पड़ेगा वैष्णव को। तो राधा रानी नारद जी की दर्शन कृपा और फिर छोटी हो गई, और आप सभी जानो इस पवित्र प्रसंग में पुनः दोहराऊंगा, राधा की बाल लीला, पौगन लीला, यौवन लीला, किशोर लीला, सब कुछ अंत ही नहीं है उनका, लेकिन कुछ कुछ बातें जितना हम समय अवकाश हमारे पास है 5-10 मिनट, उसमें आपको पता नहीं चलेगा 1.5-2 घंटा प्रिया जी के गुणगान में कैसे चला जाता है। वो अपनी सखियों के साथ वृषभानु बाबा के आंगन में खेल रही थी मिट्टी से, और कृष्ण की मूर्ति बना दी, उन्हीं को भोग लगा दी थी। और उसी समय आप जानते हो ऋषि आए, दुर्वासा जी आए और मांगा, प्रसन्न हो गए उनको देखकर ही, समझ गए कोई चमत्कारी लील बालिका है, और मांगा भोजन। और इसमें कुछ लोग कहते हैं कि वही थी मिट्टी, वही दे दिया, उसमें भी बनाते भोज भात, मिट्टी के ही विग्रह, मिट्टी के ही बर्तन, मिट्टी का ही भात, वही बनता है, मिट्टी के ही बनाए जाते हैं ना, बच्चे लोग खेलते हैं तब, तो कहते कि वही दे दिया। और कुछ लोग कहते कि नहीं, अंदर गई कीर्तिदा जी से कही कि कुछ साधु आए हैं, हम उसको देना चाहते हैं। राधा रानी के 25 गुण प्रधान, अनंत गुण राधिकार 25 प्रधान, तारा देखी वश है कृष्ण भगवान चैतन्य चरितामृत, राधिका में अनंत गुण है, लेकिन एक 25 उसमें मुख्य है, और उसमें है कि पाक कला में वो माहिर थी एकदम, भोजन बनाने में वेरी एक्सपर्ट थी, बहुत माहिर थी, और वो तुरंत बना दी। और दुर्वासा जी ने खाया, अमृत से भी ऊंचा स्वाद मिला, कभी आज तक चखा नहीं था। उस बाबा के क्रोध वाला विग्रह ना, दुर्वासा मतलब महाक्रोधी, लेकिन प्रेम में नाचने लगे वो भी, तो बोले कैसे करंट आ रहा है इतना, कभी सीरियस गंभीर रहने वाले दुर्वासा रोमांच कंपा, वो समझ गए कि नहीं ये कुछ दिव्य बालिका। और उसके मन से सहज अनायास आशीर्वाद निकला कि हे देवी, हे लाली, तुम्हारे हाथ से जो भी बनेगा ना वो अमृत होगा, और इसको जो खाएगा ना उसको कोई विघ्न नहीं आएगा, उसकी चीर आयु लंबी आयुष्य होगा, और वो सुंदर होगा, और उसकी कीर्ति अखंड रहेगी विश्व में, किसकी? जो तुम्हारे हाथ का बना हुआ भोजन खाएगा उसकी। और ये बात पूरे विश्व वृंदावन में व्याप्त हो गई, और वृंदा नंद बाबा की भारिया नंद गेहिनी नंद रानी ने सुना, उन्होंने कहा हमारे लाला पर तो बड़ी आफत है, क्योंकि सब लोग यही असुर इतने ही आते रहते, और व्रज की रक्षा भी यही करता, और जब दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया है तो हे कीर्तिदा महारानी, उनके साथ उसकी मित्रता थी, बोले उसको भोजन कराने के लिए भेजना। नंद भवन में भोजन कौन बनाता है? राधा रानी। मैं आपको इतना ही निवेदन करूंगा, जो गिरधारी मंदिर से जुड़े हुए वैष्णव गिरधारी के लिए भोजन बनाते हैं किचन में या अन्य बाहर डीटी किचन या वैष्णव भक्तों के किचन में, तो हमें बड़ी कभी कभी आलस लगती है, लेकिन ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि कृष्ण के लिए और कृष्ण का कीर्तन भजन प्रचार करने वाले वैष्णव के लिए भोजन बनाने का अवसर कितना बड़ा है। और हम लोग कैसे जाते मरे हुए, आज तो हमारी सेवा है, आज तो मेरी सेवा, बोलो अब विचारिए। एक घटना आपको बताऊं, प्रभुपाद जी जब लंदन में थे और उस समय वहां पर किचन जो भक्तिवेदांत मैनर अपना मंदिर है इसको उनका, तो वहां पर उस समय रेवती नंदन महाराज थे प्रभुपाद के शिष्य, तो वो कहते थे प्रभुपाद आपने मेरा नाम थोड़ा ठीक नहीं रखा, वो बोले क्या किचन स्वामी मेरा नाम रखो, क्योंकि मैं किचन से बाहर निकलता ही नहीं, क्योंकि वहां उस समय भक्तों की कमी थी, तो उनको पूरा क्योंकि भोग मंगला भोग भोग सब भोग उनको बनाना है, तो अब तो मैं किचन स्वामी लगता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा हंसते हुए, नहीं तुम किचन स्वामी नहीं हो, तो बोले किचन स्वामी नहीं श्री राधा रानी है, कृष्ण का जहाँ भोजन बनता है वहां कौन है उसकी स्वामी नहीं, राधा बनाती है भोजन, आप वहम में मत रहो, राघवेर घरे रांधे राधा ठकुरानी चैतन्य चरितामृत, पानी हाटी नित्यानंद प्रभु है ना उत्सव दधी चीड़ा, और जब राघव के घर जाते राघव पंडित जोली वाले, वहां कौन बनाता है भोजन? राधा रानी बनाती है कृष्ण के लिए। नंद भवन में कृष्ण के लिए राधा रानी भोजन बनाती है। प्रभुपाद एक बार जुहू में थे और जुहू में शंख प्रभु, वो एक बार एक फेस्टिवल में राधाष्टमी 108 प्रकार के व्यंजन बनाए डीटी ऑफरिंग के लिए, रास बिहारी के लिए। तो फिर उसका जो भोग प्रसाद था वो प्रभुपाद जी के रूम में पहुंचाया गया, वो स्वयं आए शंख प्रभु, वो हेड पुजारी आके फिर परोसते रहे थे प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी ये चखिए ये हमने बनाया। तो प्रभुपाद जी खा रहे थे, ओ वेरी गुड अच्छा है, प्रभुपाद ये चखिए। प्रभुपाद ने कहा सब लेके आओ, सब चखूंगा, सब के सब आइटम। और वो जिसको चख रहे तो अच्छा कहते थे, तो ये शंख प्रभु कहते मैंने बनाया, आई मेड दिस। प्रभुपाद जो आइटम बोले अच्छा है तो क्या कहते थे? मैंने बनाया। तो प्रभुपाद उसके सामने देखते थे, फिर खाने लगते, सब खाकर फिर कहते सब कुछ राजा रानी ने बनाया, हाथ धो लिया। तो बाद में उसको पता चला गया, अरे मेरे मुझे लग रहा था मैं ही बनाया। प्रभुपाद हाँ हाँ कर रहे थे, लेकिन अंत में प्रभुपाद जी ने कहा सब कुछ राधा रानी ने बनाया। राधा रानी पाक कला में माहिर भी थी और आलस बिल्कुल नहीं था। हम सुनते हैं सनातन गोस्वामी के लिए खीर बनाई, उस कदम टेर की लीला याद कराया आपको, बनाई ना लाली के रूप में आकर ही, बहुत कला जानती है। और रही बात वो नारद जी वाली, वो थी आशीर्वाद तो दिया उसने, तो बड़ी सुंदर कथा है। वो प्रसंग हुआ कीर्ति पूर्णमासी आई, गुणगान गई, तुम बड़ी भाग्यवान हो कीर्तिदा, तुम्हारे घर में सर्व लक्ष्मी संपन्न, लक्ष्मी संपन्न सार शक्ति प्रकट हुई, सारे देवता अब यहाँ के चक्कर काटेंगे, परिक्रमा करेंगे, तुम्हारी ख्याति त्रिभुवन में यश फैल जाएगा, ये वो सब कुछ। लेकिन कहा सब कुछ है लेकिन आंखें नहीं खोल रही। और सब मिलने के लिए आज नई बच्चे बच्ची जन्म लेते तो सब मिलने आते ना, परिवार रिश्तेदार कुछ ना कुछ भेंट लाकर। नंद बाबा भी आ गए, यशोदा भी आ गई और साथ में एक भेंट थी, यशोदा नंदन ब्रज जन, यशोदा का लाला ही भेंट है ना, उसको लेकर ही आ गई। और ये दोनों मिल रहे, उसमें ये बेचारी बात कर रही थी कीर्तिदा जी की, बेचारी कहना भी वाणी दोष है, क्षमा करिए आप, महासौभाग्य होती है वो तो। अरे लाली के आंख नहीं है, तब तो कृष्ण यशोदा के अंक से उतर के पहुंच गए अपनी प्रिया के साथ, और वो सोई हुई थी ऐसे ही आंखें बंद। भगवान ने अपने कोमल अंगों आंखों को स्पर्श करते ही कमल की तरह आंखें खोल दी राधा रानी ने। पुरुषोत्तम महाराज ने तो ऐसा भी लिखा है कि हुआ यूं कि कृष्ण को नंद रानी ने अपने अंकवार में लिया हुआ था, और जब वहां गई तो कीर्ति दादी की लाली को देखा तो बोले इतनी सुंदर, हाँ इतनी चमत्कारी बालिका, तो कृष्ण को छोड़ दिया, राधा रानी को उठा लिया यशोदा ने। तो कृष्ण देखते हैं अभी से, अभी मेरा सर्किट अभी से डाउन, मेरा से, तो अभी रोने लगे। और यशोदा उस कीर्तिदा महारानी की लाली को बैठ गई कीर्तिदा साथे करने, तो लाला भी ऐसे कैसे करते हुए यशोदा के इस गोद में अब दोनों बैठे हैं। और उस समय वो तो शांत है और कृष्ण तो नखट है ही है, तो उसने धीरे से हाथ हिलाते, बच्चे लोग तो ऐसे करते हैं ना, बड़े अपने में मजे बच्चे, और उसी समय उसको छू दिया और अचानक आंख खुल गई। तब से कीर्तिदा जी फिदा हो गई कि तुम्हारा लाला तो बड़ा चमत्कारी है, जन्म से आंख नहीं खोल रही थी ये वो सब, और हम लोग इतने चिंतित थे और इसने बिना कोई दवा के, अरे भाई इनको कोई देख लेना, तो देखता हुआ अंधा हो जाए, अंधा देखने लग जाए। जादू भरी तेरी मुस्कान है ऐसी, भगवान श्याम सुंदर किसी को हंस के देख ले वो गया काम से, भूल जाता है सब कुछ, इसको क्या पता। कीर्तिदा जी बेचारी अपने वात्सल्य भाव में है, लेकिन इनकी लीला इनको पता नहीं, इनका माधुर्य क्या है। तो ऐसे आंख तो खोल दी, और वास्तविक यह है कि राधा रानी इधर आने से पहले निवेदन की थी कि पृथ्वी पर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे सिवा किसी, तुम्हारा दर्शन पहले, क्योंकि राधा कृष्ण के अलावा न किसी को देखती है, न किसी को छूती है, न किसी को छूने, कृष्ण ही उनके प्राणगण जीवन है, उसके अलावा कुछ न जानती पहचानती। दुर्वासा के इस आशीर्वाद को देखकर नंद रानी ने फिर उसी को ला दिया भवन में। राधा रानी हर रोज भोजन बनाने जाती थी, भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है ना, राधिका पकवान भज भकत वत्स, उसने गाया है कि राधा रानी बनाती है और कृष्ण खाते हैं ना, तो किचन से राधा रानी ऐसे कोने से देखती है, और कृष्ण जब खाते तो राधा रानी बड़ा आनंद लेती है, हाँ मेरे हाथ का खा रहा, और जब वो खा लेते हैं ना तो अवशेष पाए राधा रानी उसी का कृष्ण का जूठन महा महा जो भी कहिए खाती है, उसी में वो आनंद लेती है। प्रिया जी इतना तक सुन लीजिए, लिखा है कि राधा रानी का जो ब्याह हुआ बरसाने के बाहर, कौन सा गांव है, नंद गांव के बाजू में जावट, हाँ जटिला। अरे भाई राजा रानी का जन्मदिन है और जटिला को याद न करे तो भी अच्छा नहीं लगेगा राजा रानी, क्योंकि वह ऐसी बहू है कि जो सास को याद करती है, क्योंकि उसको सांस नहीं लेने देती। अब आप इस लीला को कहने से पहले तब तो समझाना पड़ेगा कि ये कैसे बता रहे हो भाई, अभी बोल रहे राजा ने किसी को देखती ना छोड़ती और आप बोल रहे ब्याह हो गया ये हो गया। तो सार यही समझिए, बड़ी लंबी कथा है, श्रीराम का साथ था, राधा रानी का पृथ्वी बनाने के पूर्व, ये सब उन्हीं की लीला है। मुख्य प्रयोजन यह था कि परकिया रस का आस्वादन करने के लिए अन्य घर विवाह कराना था, और वो जो जिसके साथ विवाह हुआ वो अभिमन्यु गोप भी कोई और नहीं, कृष्ण ही के ही शेडो, उनके ही छाया परछाया थे, और फिर भी न उसको छुए न देखे आ सकते, न छू भी नहीं पाए अभिमन्यु, ये भी कथाएं है। और ये राधा रानी और उसके भाई श्रीराम ने ऊपर ही जो बिरजा के प्रसंग है ब्रह्म वैवर्त पुराण का, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, तो उसमें ये बताया है कि तुम्हें कृष्ण से 100 वर्ष विरह होगा, श्रीराम ने कह दिया, और तुम्हारी पृथ्वी पर जन्म होगा और तीसरा साथ दिया किसी और के साथ विवाह भी हो। ये सब श्राप गोलोक वृंदावन में होता नहीं है, वो चिन्मय धाम है, काल से परे है, न वहां केवल आनंद है, लेकिन भगवान की लीला प्रयोजन है, तो योग माया इस तरह का लीला रचती है आने के लिए पृथ्वी, वो माया जनित नहीं है, सब अतरंगा शक्ति के अधीन है, ये समझना चाहिए हम वैष्णवों को। और इसलिए इस ये परकिया रस आस्वादन के लिए, और ये भी समझना चाहिए कि कौन परकिया, पर मतलब दूसरे की, सब कृष्ण की ही है, दूसरे की कुछ है ही नहीं, वो दिखाया जा रहा है दूसरे की, दूसरे की है नहीं, चाहे तो भी नहीं हो सकती, सब उनकी ही है, लेकिन गोपिया कृष्ण की परकिया नहीं है, स्वकिया है, भाव परकिया है, यू नो, भाव पर किया कि मैं, और उससे अति आनंद लेने के लिए, और ये विरह भी होता है उसमें भी आनंद बढ़ाने के लिए। पद्यावली में रूप गोस्वामी ने कहा संगमे विरह वरम एवं विरह स्यात् न संगमम, संगम होता है प्रिया प्रियतम का, विरह होता है, संगम विरह में श्रेष्ठ कौन है, विरह, क्योंकि विरह में मिलन की जो उन्मादता है वो अति बढ़ती है, विरह में सब जगह प्रियतम ही दिखता है, संगम में तो एक ही दिखता, विरह में जित देखोती तो शाम मई है, सब जगह शाम दिखता है, तो विरह व्यथा, यही तो गौड़ीय वैष्णव का भाव है, विप्रलंब सबसे ऊंचा, सेपरेशन फॉर कृष्ण, कृष्ण के विरह में रो, इसी के लिए राधा रानी है और गंभीरा में यही कर रही है, और इसी आस्वादन के लिए तो महाप्रभु आए हैं, है कि नहीं, तो वो बड़ी सुंदर लीला है। जटिला कि यहाँ ब्याह होने के बाद भी नंद रानी ने कहा था कि कीर्तिदा तुम्हारा ब्याह तुम्हारी लालिका किसी से भी, भोजन बनाने के लिए यहाँ नाचे, तो ब्याह के बाद भी ससुराल जावट से नंद भवन में राधा रानी भोजन बनाने जाती थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने चमत्कार चंद्रिका में ये दिया ये प्रसंग, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का लिखा हुआ लीला, क्या हुआ कि गई राधा रानी, जाती थी हर रोज मिलन होता था, बहुत सारी कथाएं दी है उन्होंने, गोविंद लीला अमृत उज्ज्वल निर्मणि, लेकिन हम लोग गीता ठीक से नहीं पढ़े, ये सब बातें करना अच्छा भी नहीं मिला, लेकिन आज प्रसंग ऐसा है तो मैं दुस्साहस कर रहा हूँ, यहाँ जो भी वैष्णव बैठे वो क्षमा करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ बोलते हैं क्या करते हैं, हमारा आनंद है और हम कर रही है, लेकिन आपके सामने करना पड़ रहा है ये, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, हम तो ये करते ही दुनिया जो कहे सो कहे, लेकिन प्रसंग है तो सुनना समझना भी चाहिए, हमारे आचार्य का लिखा उसमें भी रस है, और हम तो मानते हैं कृष्ण प्रिया है, शक्ति है, इज इटर्नल, वो शाश्वत है, वो काल से परे है, कृष्ण की प्रिया है, उनकी लीलाएं होती रहती है, तुम जानते मानते करते हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं, शुद्ध भी नहीं हुए हैं, लेकिन जानते मानते तो है ना, मानते भी है ये लीला सही है और जानते भी है कि ये सही हो रहा, तो फिर सुनने में कोई इतना बाधा, और किसी को बाधा हो तो दरवाजे तो मंदिर के खुले ही है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम, है ना। एकदा तु जटिलायां चिंतातुरा, एक दिन जटिला चिंता में आ गई, क्या चिंता हो गई, उवाच पुत्रीम, उसकी पुत्री को कहा कि कुटिला मेरी भारी चिंता है, एक सर्द हद, क्या क्या चिंता है माता जी आपको, तो जटिला ने कहा कि देखो पुत्री मेरी चिंता यह है कि मैं अपनी पुत्र वधु की रक्षा उस कृष्ण से कैसे करूं, दांत पीसकर बोली कि उस कृष्ण से न रक्षितुम प्रभावम, मेरे प्रभाव मेरी शक्ति से बाहर है कि मैं मेरी पुत्र वधु की रक्षा नहीं कर पा रही हूं। किससे? कृष्णात, उस कृष्ण से। तो कुटिला ने कहा कि उसमें क्या है, आप सास है, सास मतलब मां, मां मतलब बहु पर पूरा अधिकार। भूल जाने की सास भी कभी पहले बहु थी, वो भूल जाने का, सास बनी मतलब अपना ऑर्डर करने का, चिंता क्यों करती हो आप, बंद करो जाना आना उसका नंद भवन में, रोक दो, समस्या ही का समाधान हो जाएगा। आप चाहती हो कि कृष्ण से राधा ना मिले, आपकी पुत्र वधु की मान सम्मान और आपकी इज्जत मर्यादा रह जाए, तो आप ही तो भेजती हो ना नंद भवन में, नंद रानी के यहाँ भोजन बना, और भोजन बनाने जाते हैं तो फिर लीला हो जाती है, इसलिए बंद करो उसको बाहर निकलने का, किवार बंद करके रखो घर पे। ये कौन सिखा रही है? ननंद भी कभी कभी ऐसी माथा नहीं मड़ा ना, बाप रे, यमराज कम सजा देता है, इतना भारी कर देती। लेकिन हमको आश्चर्य ये लगता है कि ननंद के हाथों इतना दुख पाई हुई बहू जब अपने मैयर जाती है ना, तो वो भी खून का बदला, खून वो भी ऐसा ही, वो भी वहां भाभी पर इतना ही जोर जमाती है। बोलो अब किसको कहा जाए, समझना चाहिए ना कि मारी ना मेरी वहां जो दशा है ये भी, लेकिन वो भूल जाती है उस समय, वो तो वही ये संसार है। समझना चाहिए एक सांस को भी कि नहीं, किसी के घर की स्त्री, ये भी मेरी बेटी, मेरी बेटी को कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा, तो नहीं पसंद, और तुम दूसरे की बेटी के साथ करो सांस, देखो ये रोग देखो, जो सांस होती है ना उसको एक चीज अच्छी लगती है, क्या कि उसकी बेटी का पति उसका कहना माने, मेरा जमाए मेरी बेटी जो कहे वो करे, अच्छा तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू कहे वो करने नहीं देगी तो नहीं पसंद है, तुम्हारा बेटा जो तुम्हारी बहू कहे वो कहीं कर दे तो तुम तो ताड़का ही हो जाती हो, और चाहती यह हो कि मेरा जमाए मेरी बेटी का ही कहा, गुरु का कहा ना करे। और ये आज की जमाई को सिखाने की भी बात नहीं, वो करते ही है बिना सिखाए, एक तो करते ही है। इसीलिए समझिए, समस्या को समझिए, नहीं अगर हम वैष्णव है तो वैष्णव हमेशा पर दुख दुखी है ना, दूसरे के सुख का विधान करता है, वैष्णव का दो ही काम होता है, दूसरे को सुखी सुखी करना और उनको कृष्ण भक्ति में कैसे लाऊ ये प्रयास करो, अपने परिवारों का है ना, उसको कृष्ण भक्ति में कैसे लाऊ और कैसे मैं उनको संतुष्ट करूं या आनंद दू। लेकिन हम लोग स्वार्थी हो गए, नहीं नहीं, तब घर घर में महा हो जाता है, हो रहा है, ये कलियुग है, सब कली चेला बन चुके हैं। कृष्णदास के घर की बात हो रही है, ये जो गृह मेधियों की नहीं गृहस्थों की बात हो रही है। एनीवे आइए उस लीला में जावट में चलते हैं जहां ये दोनों सास ननंद बोल रही है हमारी राधा रानी के विषय में। क्या कह रही है जटिला जी? अच्छा बता रही हो आपने, समझ में आ गया, कल से राधा रानी का घर से निकलना बंद, नंद भवन में जाने ही नहीं देना है। तो फिर कहा तो उधर से वो नंद राजा है ना, वो महारानी है और उसको हर रोज जाती थी, तो बताना पड़ेगा कि नहीं आएगी, और नहीं आएगी नहीं बताए बिना बंद कर दिया तो कुछ एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि हम उनकी प्रजा है, नंद की है ना, राजा है उनकी प्रजा है और महारानी है। अच्छा कुटिला तुम जाओ बताओ यशोदा को, क्या बताओ कि कल से जटिला ने कहा है कि कल से हमारी बहू आपके यहाँ भोजन बनाने नहीं आएगी, बता दो जाके। तो कुटिला ने कहा माताजी मैं जाकर यशोदा जी को बता देती हूँ, लेकिन अगर वो पूछे, महारानी है और पूछेगी तो उसका उत्तर क्या दूं वो पहले से समझ के जाती हूँ। ये भी कुटिला की बुद्धि है, कोई कुछ गुरु पिता पति कुछ बोलते हैं हाँ चलते नहीं बनना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या बोल रहा है और क्या होगा, आधा कर सुना पड़ा ऐसे ही गड़बड़ करेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। कोई बुद्धिमानी, कुटिला बुद्धिमानी से पूछ रही कि अगर वो मना करेगी, वो पूछेगी कि मेरे लाला को इतने असुर परेशान करते हैं और मेरा लाला पूरे ब्रज की रक्षा करता है, तो दुर्वासा जी ने आशीर्वाद दिया है कि राधा के हाथ का भोजन बनेगा, वो खाएगी तो इनकी रक्षा होगी, तो फिर क्यों नहीं आएगी, भेजना है उसको पूरे ब्रज की रक्षा के लिए, राज धर्म के लिए, राधा रानी नंद में भोजन बना आनी चाहिए। ये अगर यशोदा जी ने तर्क दिया तो जटिला जी मैं क्या कहूं, अब इकुटिला का शब्द सही है ना, माइंडेड आप समझ रहे हो ना। हाँ, तब जटिला ने कहा कि उसको कह देना, जटिला क्रोधित हो गई कि दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया है कि भोजन बनाएगी, जिसको भोजन आजकल आप क्या खाएगा वो बनाएगी, तो कल कहीं दुर्वासा आशीर्वाद दे दे कि राधा जिसको छू ले वो अजर अमर हो जाएगा, तो क्या मैं मेरी मेरी पुत्र वधु को सबको छुआने भेजू, ऐसे क्रोध में जल्ला कर कहा। यदि स्पर्शेत स्यात, अगर स्पर्श होगा यह तरही वह स्यात, अगर वो बोल दे तरही किम, तो मैं क्या करूं अपनी पुत्र वधु को उनके कन्हैया को छुआने भेजू, बात करती हो तो। अब देखो क्रोध में तो क्या क्या बोलते हैं, उसको कह देना कि हमारे पुत्र वधु और हमारे कुल की मर्यादा को हमें रखना है, और ये कोई अच्छा नहीं है कि हमारे घर की पुत्र वधु सबके यहाँ खाने बनाना जाए, आज तक ऐसा रिकॉर्ड हुआ कहीं, होता ही नहीं है, ये कहां से चल गया पता नहीं। कह देना उस नंद रानी को कि नहीं आएगी राधा रानी, लेकिन मैया वो कह रही कि ब्रज की रक्षा, ब्रज की रक्षा ना, एक बात कह देना हमारे राधा रानी के हाथ का भोजन ही चाहिए ना, घनिष्ठा सखी जो है ना नंद भवन में, एक घनिष्ठा सखी है, आप अगर भक्त वत्सल पढ़े होंगे भज वत्सल भोगारती, तो उसमें लिखा है घनिष्ठा अनिला, घनिष्ठा नाम की सखी सब प्रसाद सर्विस करती है। तो बोले घनिष्ठा को भेज देना जावट में, हमारी राधा रानी यही बनाएगी, हमारे घर का बनाएगी, तुम्हारे लाला के लिए ले जाए टिफिन भात, गुजराती माँ कैसे भात ले जाए भातो लेकिन आएगी नहीं आज से लाली, बस सीधा बात है, बोल दिया सब बोल दिया। अब जटिला इस तरह कह रही है, और फिर न माने तो मैया, तो जटिला ने कहा कि कह देना नंद रानी से कि हम ये नंद गांव छोड़ के कहीं कहीं भीख मांगे बंबई में मीरा रोड में चले जाएंगे, लेकिन यहां नहीं रहना है, बस भले उधर भाड़े का लेना पड़े, ये प्लॉट छोड़ देंगे हम, अगर नहीं माने, उनकी प्रजा है तो मानना ही पड़े, नियम लागू करे तो छोड़ दो गांव ही, लेकिन हमारी बहू की रक्षा हमें करनी है, बस कैसे तैसे। अब कुटिला जी सारा विज्ञान समझ गया ये नंद भवन में, और यशोदा जी से निवेदन कर दी जटिला ने जो जो बताया था कि राधा रानी आज से यहाँ भोजन बनाने नहीं आई, और आपको चाहिए तो घनिष्ठा को भेज दीजिएगा, वो वहां से जो टिफिन बना देगी ना लड्डू जो भी पार्सल ले जाए लाला को खिलाते रहो। बात तो भोजन की है ना, कहाँ बनाने का, ये तो दुर्वासा ने कहा नहीं, हाथों के भोजन की बात बोली है, इस जगह बनाना है तो कहा नहीं ना, बात भी सही है, यशोदा जी क्या करो तो सही है। और दूसरे दिन नियम लागू हो गया, और इधर सुबह लाला रोज मुस्कान हंसते हैं, लेकिन आज उसको प्रसाद में रोहिणी ने बनाया है उन्हीं की माँ, लेकिन भाई प्रियतमा के हाथ में फिर माँ की थोड़ा है ना, अच्छा ये नाटक तो चलता ही है ना, हमें तो बान हाथ की रोटली मत भावती, हाँ भावती तन ऐसा लिखते हैं पति को पत्नी को पटा, हमें तो बान हाथ में भावती बायत मोटो की रस्तन पण हवे हूँ दाय गुजराती भक्त लोग समझ ये हमारे थर्ड क्लास जगत की बात कर रहा हूं मैं, वो तो आध्यात्मिक लीला है। कृष्ण थोड़ा उदास और गए चराने लिए वन में चल गए श्री दाम सखाओं के साथ, और ये यशोदा भी देख रही है रोहिणी, और घनिष्ठा को दुख लग रहा है कि आज लाला दुखी, और फिर टिफिन लेने तो आना है, और वो नंद भवन से आई कहां जावत, लेकिन यहाँ राधा रानी की जो दशा है बाप रे, कोई कोई वर्णन नहीं कर सकता। लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कि परस्परा दर्शन ताप तापितो बभू वहंत यथा तथा स्वयं सरस्वती नक्षमेय। राधा कृष्ण विरह में जो उन्हें कष्ट और दुख है, उस दुख विरह व्यथा का वर्णन स्वयं सरस्वती भी समर्थ नहीं है करने में। उदास पड़ी हुई है जमीन पर, आंखें बंद हो चुकी है, जैसे प्राण ही निकल गए हो, क्योंकि राधा रानी तो एक मिनट नहीं कृष्ण से विरह हो सकती, उनको अलग नहीं रह सकती, आज नियम लागू कर दिया है कि जाना ही नहीं है बाहर, देखना ही नहीं है, मिलना ही नहीं है, तो राधा से इसके बिना और कोई दुख नहीं है उसको। सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सकती कैसी दशा थी, इसका एक झलक दिया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, वो कहते हैं सरोज पत्रे विदुगंध सार, कमल के और गुलाब की कोमल पंखड़ियों की शैया बनाई गई ललिता और विशाखा जी के द्वारा राधा रानी के लिए, और विदु गंध सार और अनेक अनेक चंदन के लेप पुष्प से सुगंधित वातावरण बनाया गया और उस पर पंख चंदन के लेप से ऊपर गुलाब और कमल की शीतल पंखुड़िया और चंदन का इत्र छाटा गया पूरे रूम में राधा रानी को आनंद देने के लिए, उसकी वीरा व्यथा ताप कम करने के लिए। लेकिन राधांग स्पर्शे न क्षणे न हा हंत हंत मुर्दा प्रपद्ये। राधा जैसे ही उसको छुई ना, सारे राख हो गए जल कर। राधा के विरह से भरा हुआ ये शरीर उसका स्पर्श पाते ही सारी पंखड़िया सब चंदन लेप सब राख बन गया। इतना राधा रानी के शरीर में ताप था विरह का। ये जीव में नहीं होता, ये महाभाव की अवस्था का वर्णन किया जा रहा है। जैसे महाप्रभु ने गंभीरा में महाभाव प्रकट किया तो छंदी खुल जाती थी, कई गुना शरीर उसका हो जाता था। ये जीव में नहीं होते ये विकार जो यहां हो रहा है राधा रानी के। निंदसी, वो लिखा है कि विधिर ब्रज की गोपियां ब्रह्मा जी के द्वारा जो ये सृष्टि कला कौशल है उसकी भी निंदा करती है। ब्रज की गोपियां उनकी भी निंदा करती है। क्या निंदा करती है? कि कृष्ण को देखे बिना उनकी पलक भी गिर जाए तो गोपी के लिए असह्य हो जाता है, विशेषकर राधा रानी के लिए। गोपी गीत का वो बड़ा मधुर माधुर्य श्लोक, अटति यद भवान ही काननम त्रिटी युगायते त्वाम पक्षताम कुटिल कुंतला श्री मुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्षमकृत दिशाम। उस त्रुटि मतलब कमल के पत्ते में छेद करने समय उतने समय को भी युग जैसा लगता है, जो हमारे शिक्षा स्कंध में महाप्रभु ने कहा युगायत। ऐसी कृष्ण प्रेम की मूर्तिमान स्वरूपा श्री राधिका राधा रानी, और उसको आज विरह मिलन करने ही नहीं देना है तो क्या दशा होगी। चैतन्य महाप्रभु ने देखो यहाँ पर कितना सुंदर भाव दिया है, विधि जड़ तपोधन रस शून्य तार मन नहीं जाने योग्य रस जन। ब्रह्मा तप कर करके जड़ हो चुका है, उसको रस का पता नहीं है। हाँ, गोपी भाव में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमको करोड़ों आंखें देनी चाहिए, बदले दो ही दिया, और दो दिया और उसके ऊपर भी ढक्कन बना दिया जो गिरता रहे, जो हमारे श्याम सुंदर को देने में बाधा पड़ता है। और इसीलिए उस विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भाव देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं कि स्यात वांछया उत्तमा मीन जन्मनी। राधा रानी गोपिया कृष्ण को देखने के लिए मीन जैसी आंखें चाहती, मछलियों की आंखों में ये नहीं होता ये पलक। आप बंबई में मच्छी मार चलता है देखे नहीं होंगे, उसकी आंखों में पलक नहीं होता। तो गोपिया ऐसा आंखें चाहती है, मीन जन्म चाहती है कि श्याम सुंदर को एक टक देखती रहे, ऐसा माधुर्य ऐसा प्रेम। और आज उसके प्रियतम से उसका विरह है, अद्भुत बात है। और उधर श्याम सुंदर भी ऐसे है, घनिष्ठा ने जब देखा कि राधा रानी की ये दशा, उसे रहा नहीं गया। ललिता विशाखा से निवेदन की, बोले बोली मेरे अचेत पड़ी है, तो कान में जाके घनिष्ठा ने कहा कि राधा रानी कृष्ण देखो सामने खड़े हैं, कृष्ण सामने खड़े ही, राधा रानी उन्माद वध होकर खड़ी होकर देखती है। वो झूठ बोला उसने ऐसे, उसको होश में लाने के लिए। और उसी समय कह दिया, जैसे ही भवन में होश में आई ना, बोले कृष्ण भूखे हैं और तुम्हारे लिए मैं भोजन, उसके लिए मैं भोजन लेने आई हूं, तुमने पकाया कि नहीं, फटाफट बोल दिया। इतने ही बात में वो जैसे ही होश में आई तब राधा रानी अचानक सडनली वो एकदम आश्चर्य में हो गई और उन्हें कहा, हे रूपमंजरी आओ इधर, विशाखा व्यवस्था करो, चूली जलाओ, हमारे श्याम सुंदर के लिए भोजन बनाना है। अब देखो इतनी विरह व्यथा में थी, लेकिन जब अपने प्रियतम के लिए सेवा का अवसर भोजन का, तो एकदम एक्टिव आलस छोड़ के खड़ी हो गई। और जैसी उस चूल्हे के पास बैठी ना, तब चक्रवर्ती पाद ने लिखा है, वे कहते हैं कि वो पाकान्न, वो अन्न पकाने के लिए जो अनल था, वो अग्नि था, उसके संग में आई, उसके स्पर्श में आई राधा रानी बाजू में बैठी। तो राधा तनु शीतलताम पेये, राधा रानी का शरीर पूनम के चंद्र के समान शीतल हो गया। अरे बाप रे, अभी आप बता रहे थे कि फूल की शैया में गर्म हो गया और अग्नि के पास गई तो शीतल हो गया, ये कैसे हो सकता है? यही प्रेम है जो मनुष्य की बुद्धि से परे है। तब वो लिखते हैं कि विचित्रम धामा, ये वृंदावन का ये विचित्र प्रेममय राज्य की भूमि की ये लीला देखिए कि चंद्र जिसे जला रहा है और अग्नि जिसे शीतल कर रही है। अभी कौन कवि का सामर्थ्य है किस राजा रानी के तत्व को या उनकी लीला को वाणी से वर्णन कर सके इस प्रेम का, कोई नहीं। घनिष्ठा ने फटाफट टिफिन लिया, कुछ बातें हुई गोपियों में, चली गई। संध्या हो गई, शाम हो गई, उसी समय विशाखा का रो हुई आई, पता क्या चर्चा हुई, रोती हुई आई और क्या कही, हे जटिला मर गई, मर गई, क्या हुआ तुमको, क्यों रो रही हो? बोले राधा ददर्श अहि अलक्ष रूपम। राधा रानी को सांप काट लिया। विशाखा रोती हुई जटिला के चरण में आकर क्या बोली, राधा रानी को सांप काट लिया। ओह कथम, कहां काट लिया, किम्वा कैसे काट लिया? तो रोती रोती विशाखा जी कहती है कि जटिला जी ऐसा हुआ कि हमारे बरगद के पेड़ के वृक्ष के नीचे एक मणि चमक रहा था, वो सांप का मणि था, लेकिन राधा रानी ने समझा कि ये तो मेरा कोई मणि है जो बिखर कर गिर के उसको लेने गई, उसी समय सांप ने काट लिया और ऐसे ही अचेतन अवस्था में मरी हुई पड़ी है। और जटिला हाय रे हाय पुत्र वधु करती हुई मर कहती हुई आई में, और राधा रानी तो विरह, वो दशा वास्तविक थी, सांप नहीं काटा था, लेकिन कौन सा विरह, जो कृष्ण के प्रेम में वो अवस्था थी, और या तो घनिष्ठा और जो कुछ समझा के गई थी वो कुछ हुआ था। और अब राधा रानी अचेतन ऐसी पड़ी हुई है और विशाल जटिला उसको हिला रही है, अभिमन्यु कहां हो, कुटिला बुलाओ तुम्हारे भैया को और सर्प मंत्र उतारने वाले को बुलाओ, ओझा को, हमारी पुत्र वधु का प्राण बचाना है। और ऐसे चिल्लाती हुई राधा रानी को संभालती हुई, क्या हुआ पुत्री, उठो उठो। तो राधा रानी कुछ चेतन होती कहती है क्या हुआ, जैसे उसको पता ही नहीं। और इधर से मंत्र ढूंढने वाले को लाओ, मंत्र जानने जो सर्प उतारता हो। तो राधा रानी एक बात कहा जो थोड़ी होश में थी, उन्होंने कहा देखो सुनो सुनो, अन्य पुरुष स्पर्शे न यदि स्यात्, अगर कोई दूसरा पुरुष मेरा स्पर्श करेगा ना, जयाम असुन जानी सहसा, मैं अपने प्राण तुरंत त्याग दूंगी, कोई मुझे मंत्र संत्र नहीं चाहिए, कोई मेरे शरीर को छूना नहीं चाहिए, मैं कुलवती नारी हूं। देखो राधा रानी कह रही, तो ललित तो जटिला जी कहती है कि देखो पुत्र वधु, जब रोग होता है ना तो उसमें अभक्ष भक्ष विचार नहीं होता, स्पर्श अस्पर्श विचार नहीं होता, उपचार करना ही विशेष प्रयोजन होता है, कौन छूता है, सब तुमको अच्छा करना है हमको। जब इस तरह बातें हो रही थी ना, तो एक दूसरी बूढ़ी औरत उधर बैठी थी, एक सखी जटिला की, इन बेनपणी फ्रेंड, हर फ्रेंड उसने कहा कि तुम्हारी बहू को सर्प काटा है ना, विष लगा है ना, हाँ देखो देखो क्या करे अभी। तो उसने कहा यह कालिया अगादि भुजंग मर्दी, जिसने कालिया के सर्प को विष को काट निकाल दिया, अगासुर के विष को भी जिसने शांत कर दिया, दृष्ट्वाम तपित शोक उदकाम गा गाये, उस कालिया विष धरा में जब गई थी तो पीकर मर गई थी, लेकिन आजीव यत हरे मान आर्या, लेकिन उस नंद नंदन ने जैसे ही उस गायों को देखा, बछड़े को देखा, तो सारा विष उतर गया और वो जीवित हो गई। सतवधु तुम्हारी वधु के लिए भी उस कृष्ण को बुला लो, वो देख लेगा, सारा विष उतर जाएगा। देखो ये सखी कितना कृष्ण तत्व जानती है, उसने उतारा था उसको, मर्दन करना जानता है विषों को। तब ये ललित ये सब जैसे कहा ना, तो राधा रानी ने क्या कहा सुना, राधा रानी कहती है नहीं, जिसके कारण मेरी निंदा हो रही है, जिसके कारण मैं बदनाम हो रही हूं, उसका नाम भी मत लेना। अरे वाह, देखो सीखो, क्या सीखो, क्या सीखो हम लोग हाड़ चर्म के काम क्रोध के दास बन चुके हैं, क्या बन चुके, और लीला क्या सुन रहे हैं, प्रेम राज्य की उज्जवल। अभी हमारे मन को बुद्धि को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा इन आचार्यों के लेवल पर, वहां हम ले नहीं जा सकते, लेकिन उनकी कृपा से उनकी आज्ञा से जब सेवा साधना करके शुद्धता पाएंगे ना, तब कुछ कुछ कृपा के बल पर यहां पहुंचा जा सकता। अभी तो हम पहला स्टेप कर रहे हैं, क्या श्रवणम। इसीलिए भैया विशेष बात यह सावधान करना है, एक 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 चैतन्य चंद्रोदय में सुंदर श्लोक आया है, वो कहते हैं संसार दुख जल दो पतितस्य काम, क्रोधादि नक्रम करे कबलीकृतस्य, दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य, चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंब, हे चैतन्य महाप्रभु अपने चरणों की कृपा मुझे दीजिए, मेरे मुझ पर आश्रय कर, मेरे मेरे ऊपर कृपा की वर्षा कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं संसार दुख में जल रहा हूं और काम और क्रोध रूपी मकर, जैसे पानी में मगरमच्छ होते हैं ना, ये संसार रूपी भवसागर में कौन मगरमच्छ है? काम क्रोध लोभ ये सब मुझे नोच रहे हैं। और तो बोले कि भाई डर के निकल जाओ ना। बोले फंसा हुआ हूं, पकड़ा हुआ हूं। किससे? दुर्वासना निगड़ित, दुर्वासना की, मेरे हृदय में कामना और वासना की रस्सी आसक्ति ने मुझे बांध रखा है। निराश्रयस्य, मेरा कोई आधार नहीं है, बस एक ही आधार है, चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंब। हे चैतन्य महाप्रभु आप अकारण करुणामय है, क्योंकि आप किशोरी जी का हृदय लेकर आए, अकेले कृष्ण होते तो इतनी कृपा नहीं होती, लेकिन ये हृदय तो किशोरी है, इसलिए कृपाएं डबल हो गई है, इसलिए आप ही मुझे तार सकते हैं। बस मेरा यही कहना है कि हम कामी क्रोधी बद्ध जीव है, और जिस लीला को सुन रहे हैं उसको अपनी बुद्धि से मत समझिए, सावधान करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे भी आप वैष्णव हो समझते हो, आइए उस प्रसंग में जाते हैं। कितनी सुंदर बात यहाँ पर हो रही है, राधा रानी कह रही है कि मैं कुलांग कुलवती कन्या हूँ, मैं उस जिसके कारण मेरा बदनामी हो रहा है, जिसके कारण आपको शक है, ये सारा बंधन जो भी चिंता उसको बात भी मत करना, और उसको लाएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। अब उसको नहीं लाएंगे, दूसरे को भी मंत्र को छुआ होगी नहीं, तुम्हारा उपचार कैसे करें? तब उसको याद आया पूर्णमासी, ब्रज की अधिष्ठात्री जो सारी लीला नियमन करती है, पूर्णमासी के पास उपाय होगा, बूढ़ी औरत जाओ उनके पास। और जटिला गई कुछ सखियों के साथ, किसके पास? पूर्णमासी। पूर्णमासी के चरणों में निवेदन करते हुए कही कि हमारी पुत्र वधु को सर्प काट लिया है, देवी आपको उपाय बताओ, आप सारा उपाय जानती हो। उसके पास गर्गी कन्या खड़ी हुई थी, गर्ग मुनि की, तो इसने कहा पूर्णमा, ये गर्गी तुम्हारे पिता से तुमने सर्प उतारने का मंत्र सीखा है कि नहीं? बोले मैंने तो नहीं सीखा। अरे क्या तुम ब्राह्मण कन्या हो नहीं सीखी हो? लेकिन मेरी छोटी बहन जिसका नाम है विंध्यावली उसने सीखा है। वो कहां है? बोले उसका तो काशी में विवाह हो गया, काशीपुर में विवाह हो गया, तो अब लेकिन अभी अभी वो मथुरा में आई है, मिलने आई है मैया, और वो मेरे घर पर ही है, घुमा फिरा के वही कह रही है। ऐसा नहीं, एक व्यक्ति ने पूछा कि फलाने भाई कहाँ रहते? बोले यहाँ से ऐसे जाओ, टेढ़े जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, वहां। तुम कौन है? मैं उनका लड़का हूं और यही रहते हैं, लेकिन घुमाया पूरा ए विंग में, चार सौ बीस थ्री चार पांच विंग था, ऊपर गया नीचे उधर, फिर ये मैं उधर पहुंच, और फिर कहता है कि मैं उनका लड़का हूं। घुमा फिरा के फिर कहा कि वही है, लाई तो जाओ ना उसके पास। और जटिला ने कहा कि मैं उनके चरणों में सब कुछ समर्पण कर दूंगी, लेकिन मेरी पुत्र वधु को मुझे बचाना है, उसको मैं जरूर निवेदन करूंगी। तो फिर पूर्णमासी ने कहा कि गार्गी तुम जाओ, और उसके पीछे जटिला और सब आती है, और उसको विंध्यावली तुम्हारी बहन को मनाओ, तो मंत्र जानती है, और जाके राधा रानी का विष उतारे। सारा व्यवस्था घनिष्ठा के द्वारा पहले ही हो चुका था। श्री श्याम सुंदर विंध्यावली का वेश बनाकर गर्गी की गृह में बैठे हुए थे। अरे भाई जब इतने ही सुंदर है और ये जब स्त्री बन जाए, आप कल्पना नहीं कर सकते, महादेव जी भी तो दूसरों का क्या कहना। किसी कवि ने लिखा है ना कि अच्छा है कि शाम तुम लड़का हो, कहीं लड़की होते तो कट जाते गले करोड़न के, तेरे लिए कितने गले काट लेते यार। लड़का है फिर भी जानी योगिंद्र सब मर रहे हैं तुम पर, कहीं श्याम सुंदर की जो सुंदरता है, जितनी छवि सुंदर श्याम में है उतनी राशि अनंत कहाँ, वो कहीं है ही नहीं। षडैश्वर्य में ऐश्वर्य है भगवान, और वे जब सखी रूप लिए है तब तो क्या कहना। और आकर जटिला उसके चरणों में गिरती है कि मेरे पुत्र वधु को बचा लो, तुम सर्प विद्या जानती हो, आओ चलो मेरे घर। उन्होंने कहा ए दूर हटो, कौन है, किसने बताया पुत्र मंत्र? ये गार्गी कह रही है, गार्गी उसकी खड़ी थी बाजू, तो गार्गी को देखती हुए कहती है विंध्यावली रूप में श्याम सुंदर जी कहते हैं तुमको और कोई धंधा नहीं है? मैं यहाँ अपने आनंद करने आई हूँ कि दूसरे का भी सुधरने आई हूँ? अब देखो नाटक, जाना तो यही है लेकिन अभी और डिमांड, भाव खाएंगे ना, भावग्राही तो ऐसे भी भाव खाते हैं लेकिन वो भावग्राही अर्थ अलग है, इधर अलग है, अब लीला में तो ऐसे ही अर्थ होंगे भाई। रसिकन की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना, इसलिए थोड़ा रस तो लेना। रसिका व्यास जी ने भी रसिक बनने को कहा, रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या भी की है, साधो संग बतो स्वरे रसिका, जो पांच महासाधन में एक है ना वैष्णव सेवा भागवत श्रवण, तो भागवत श्रवण की व्याख्या में यही कहा है कि अपने संगवर्ती रसिक वैष्णव के बात संग करना सुनना, नहीं तो रसाभास रसाभेद कुछ भी हो सकता है और फिर अपराध भी हो सकता है। लेकिन आप सब समझ रहे हो इसलिए मैं थोड़ा निवेदन कर रहा हूँ अपने आनंद के लिए। आज राधा रानी के जन्म लक्ष्य प्रभात जी बात ऐसी कथा होती नहीं थी, अवसर भी नहीं मिलता और ना अनुकूल भी है। अब देखो मना कर रहे नहीं जाऊंगा, तब गार्गी को कहते हैं कि मैं इसलिए यहाँ नहीं आई। अरे बहन राधा रानी वृंदावन की प्रसिद्ध वो वैश्वेश्वरी है, वो सब अधिष्ठात्री है, तुम्हारा सौभाग्य बढ़ जाएगा। अरे दूसरे के घर जाना ये हमारा धंधा नहीं है, मैं ब्राह्मण कन्या हूँ। देखो ब्राह्मण कन्या, नमो ब्राह्मण देवाय, मैं ब्राह्मण कन्या हूँ, ऐसे गोप कन्या थोड़ी थे किसी के घर आज चली गए ऐसे, मैं नहीं जाती ऐसे। तो गर्गी ने कहा कि तुम ब्राह्मण कन्या हो लेकिन तुम्हें दया नहीं है। ओके तुम्हें दया नहीं है तो नहीं कर रही हो ऐसे। ठीक है ठीक है, तुम कहती हो तो मैं जाती हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि इसमें एक इस वृंदावन में एक चोर है काला नंद नंदन, किसी लड़की को छोड़ता नहीं हो बिना देखे, लंपट हो, मेरा मेरा पतिव्रता धर्म खतरे में है तो मैं नहीं जाऊंगी रास्ते में चलते हुए। क्या प्लेन मंगाए तुम्हें ले इधर नजदीक में तो है। बोले चलो मैं साथ में चलती, गर्गी साथ में गई। जटिला बोले सब स्त्री तुमको बीच में रखेंगी, नंद नंदन आएगा ना नजर भी नहीं पड़ेगी, तो तुम ही हो क्या नजर पड़ेगी, तुम्हारी पड़ रही है सबके ऊपर। और गए और वहां पर जब भवन में पहुंचे महाराज तो सोई थी राधा रानी, तो अच्छे फिर व्यथा में थी। और विंध्यावली बीच में कह रही रस्ते में मैं जाके मंत्र बोलूंगी और एक एक तांबुल खाऊंगी और वो पान खाते खाते चबाऊंगी और मंत्र बोलूंगी तो सारा बल है ना उस तांबुल में चला जाए, वो तुम्हारी पुत्रवध को देना है तो सारा विष उतर जाएगा। और मैं कुछ मंत्र बोल के छूंगी ना मेरे हाथों में ये वो सब बढ़ जा रही और उधर जाके अपना जादू चला रही है विंध्या। राधा रानी समझ गई उसको तो दिव्य शख्स स्पर्श मिल रहा है और ये हाँ ये जानती है सही में, उसको कहती कि बेटी बड़े प्रेम से खाना ये तांबूल इसको। राधा रानी क्योंकि उसको पहले कही थी मैं छूंगी नहीं कुछ खाऊंगी नहीं, लेकिन कहते ये तो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का जूठा तो हमें खाना चाहिए, महाप्रसाद होता है, विंध्यावली का जूठा प्रसाद खाओ, और उसको तो खाना ही था ऐसी वो समझ रही थी। और तब भी वो राजा रानी ऐसे ही पड़ी है। शॉर्ट में बताऊं समय बहुत हो गया आपको पता नहीं है इसलिए, अंत तक कहा कि ये विष नहीं उतरेगा। राजा रानी ऐसे भान में आई 50%। विंध्यावली क्रोध में होकर गई, तुम सब यहां बैठी हो ना नजर तुम लगा रही हो, हमारा मंत्र ही काम नहीं कर रहा है, छोटो सब बाहर घर से बाहर, मंत्र होएगा ही नहीं कुछ यहाँ का। तो बोले नहीं नहीं मेरी पुत्र वधू को बचाना, खोटी चल सबको बाहर, ललिता भी बाहर गार्गी भी बाहर। अब दोनों विंध्यावली और राधा रानी दोनों बैठे हुए, बोले एक मुहूर्त तक कोई अंदर नहीं आना, जैसे कहा था ना 14 दिन 15 21 दिन तक आना नहीं तो फिर चला जाऊंगा वो जगन्नाथ मूर्ति बनाने वाले कोई अंदर नहीं आना एक मुहूर्त तक, जो मेरा मंत्र औषधि काम नहीं कर रहा है तुम लोगों के कारण, गुप्त रखना पड़ता है सब, ये वो ड्रामा क्या कर रहा है हमारा। फिर हुआ ये एक मुहूर्त हो गया, तब अंदर तो सब हो ही गया था, सब राधा रानी अमृत सूरत व्यापार लीला सब आनंद हो रहा है। और ऊपर से इधर गार्गी ने कहा कि चलो चलो एक मुहूर्त हो गया, लगता है कि मंत्र नहीं उतर रहा है क्या पता नहीं क्या है, चलो नजदीक जाके कान लगा के देखते क्या है। तो उसी समय वो अंदर से ऐसे ही कुछ मंत्र उठपटान बोल रहे श्याम सुंदर, फिर कहते हैं कि हे सर्पराज तुमको इधर आना पड़ेगा और विष पीना पड़ेगा। तो बोलते चलो चलो देखो सर्प आया है विष पीने के लिए वापस अपना, और सब गोपियां सब कान लगा रही है वो इधर उधर। तो अभी वही कृष्ण विंध्यावली के रूप में वही कोई सर्प बर्ब है नहीं उधर, यही खुद काला सर्प है जो बोल रहा है भो सर्पराज कुतागमनम तुम कहां से पधारे। तो कहता है कैलाश से आया हूं, किसके निर्देशन में, चंद्रमौली शंकर ने भेजा है, किस दृश्यम किस कारण के लिए भेजा है, उस जटिला के पुत्र अभिमन्यु को डांसने के लिए भेजा है। तो विंध्यावली बोलती है काग उसका क्या अपराध है, उसका अपराध नहीं है उसकी माँ का अपराध है, और उसकी माँ के दो अपराध है, जटिला के दो अपराध है। तो कहता है विंध्यावली कहती है जटिला के दो अपराध है तो फिर अभिमन्यु को डसना चाहिए या उस जटिला को डसना चाहिए, राधा रानी क्यों डसा। तो सर्पराज कहता है देखो तुम समझती नहीं हो क्या, राधा को आशीर्वाद है कि वो सदा सौभाग्यवती रहेगी दुर्वासा का, और जब राधा का प्राण लूंगा तब अभिमन्यु मरेगा ना, ये जब तक जीवित है तब तक सौभाग्यवती, तो उसका पति मर नहीं सकता, इसलिए मैं राधा रानी को काटूंगा फिर अभिमन्यु को डसूंगा। अरे अपराध किया जटिला ने, उसको नहीं डसोगे? बोले उसको नहीं डसूंगा। क्यों? क्योंकि जब अभिमन्यु मरेगा ना तो उसके पुत्र शोक में इतना दुख लगेगा ना कि विष का दुख तो कुछ भी नहीं है, एक मां के लिए पुत्र है। और फिर बहुत दुखी होगी, फिर लास्ट में उसको भी डसूंगा। बाबर उसको भी डसोगे? अच्छा अच्छा, विंध्या वाली पूछती है, सर्पराज वो दो अपराध कौन से उसने किए? अरे दो भयंकर अपराध किए है, दुर्वासा श्री हर रूप। दुर्वासा जो शिव जी के अवतार है उसको सामान्य बोला, वो कहा ना कि यशोदा का दुर्वासा कह दे कि इसको छू लगी तो छूने भेजो मेरी कन्या को। दुर्वासा तो बोलते रहते हैं नहीं भेजूंगी, ऐसा जब पहले बोला था ना वो, बोले दुर्वासा जो शिव जी के अवतार है उनको कह रही। और शंभु इष्ट देव हरेर यस्य, और शंभु जिसका दर्शन करने आते उस नंद नंदन के विषय में आदान सनाप बोलती है, बुढ़िया उसको डांटूंगा मैं। तो जटिला बाहर से सुन रही है सब कुछ, वही शाम सुन रही है, भाग कहती है हे विद्यावली सर्पराज को मनाओ, उसके चरणों में मैं सब कुछ समर्पण कर दूंगी, मेरे पुत्र वधु को बचा ले और मुझे न डसे, मेरे पुत्र को न डसे, आप कैसे भी करके इनको मनाओ। तब अंदर से विंध्यावली कहती है कि ठीक है देखो क्षमा मांग रही, अब से ऐसा नहीं करेगी और चिंता का विषय जो है उसकी सॉल्यूशन करो। सर्पराज बोलता है क्या? तो सामने से ये बिना बोले कह रही है कौन? जटिला। वो कहती है कि पुत्र वधु न रोत्स्यामी, मैं अपनी पुत्र वधु को कब में कभी नहीं रोकूंगी, भले वो नंद भवन में ही पड़ी रहे। केवल भोजन बनाने के बाद आ जाती थी ना, लेकिन उधर ही रह जाए, हमको कोई चिंता नहीं, कभी नहीं रोकूंगी। और मैं नहीं रोकती थी, लेकिन ये मेरी पुत्री कुटला कुबुद्धि मेरे को चढ़ाती रहती है वही। और ये मेरी सुशीला मेरी पुत्र वधु बेचारी पर कितना दुख झाड़ती रहती है, आज से कभी कुछ, कुटिला भी कहती है क्षमा करो सर्पराज मेरे भैया को मत काटो, मैं आज से कभी कुछ नहीं कहूंगी। तब कहते हैं सर्पो वदत, देखो चक्रवर्ती बार लिखते हैं, सर्पो वदत बोले, क्या बोले? भो सुनो याद गोप्या, हे गोप्या तुम सब सुनो, क्या सुनो? साध्वी राधा शंभो शपथ, अत्र शंभु की शपथ खाकर कहता हूं कि राधा पूर्ण साध्वी सतीव्रता पतिव्रता सती है, कभी शक मत कर ना। अब शंभु क्या वही बोल रहे हैं, लेकिन वो सर्पराज की आवाज में बोल रहे हैं कि मैं शपथ खाता हूं। और उसको भी कहते जटिला तुम तुम्हारे पुत्र के सर पर जो बाहर वो भी बैठा था बेचारा अभी मन, उसके ऊपर सर के ऊपर कसम खाओ कि कब नहीं रोकेंगे। बोले कभी नहीं रोकेंगे इस तरह। फिर चलो सर्पराज अभी तुम विष उतार के चले जाओ, ठीक है अभी मैं आराम से कैलाश जाऊंगा। ऐसा कह के अभी दरवाजा खोलो तो वही बैठी है विंध्यावली, सर्प धाई नहीं कोई, लेकिन यही जो था और ये सब आकर चरणों में गिर गए। बोले बहुत लेट हो गया, अभी चलो टाइम हो गया है, अभी बंद करना है। अरे इतनी रात हो गई कहां जाओगी विंध्यावली, तुम ब्राह्मण कन्या हमारे घर में आई, हमारे पुत्र वधु का विष उतार दी, अब एक काम करना है, क्या है? तुम अभी इनके साथ ही सो जाना, इनके साथ सो जाओ। और उस पुत्र वधु कहे जो अभी ए चल तो नीचे चल आराम कराते, वो बेचारे आंखों दिवस सर्प कहे। और ये दोनों फिर से राधे राधे, ये है भगवान की मधुर लीला। ये न के न प्रकार, ये तो उसका मान सम्मान अपमान कुछ हो, राधा की प्रत्येक चेष्टा कृष्ण प्रियतम के लिए है, लेकिन यहाँ पर जो असली सेवा में जो भाव है ना उसकी व्याख्या चैतन्य चरितामृत में बड़ी मधुर है, पढ़िए आप लोग। राधा रावण चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कृष्ण मोरो प्राण धन, कृष्ण मोरो जीवन, कृष्ण मोरो प्राणेर प्राण, हृदय ऊपर धरो सेवा करी सुखी करो, मोर रहे सदा यही ध्यान, मेरे और कोई चित्तवृत्ति नहीं, कृष्ण को सुख देना, उसे आनंद देना, उसकी सेविका दासी, वो मुझे प्रियतमा मानते हैं लेकिन मैं क्या मानती हूँ? दासी। तो बस हम लोगों को भी इस राधा रानी के जन्माष्टमी राधाष्टमी के उपलक्ष पर इस भाव को अपनाना है कि हमारे और भगवान ने हमें जो भी दिया है तन मन धन, उसे क्या करना है? गोपियों की तरह राधा रानी की तरह कृष्ण को संतुष्ट, हरि तोषणम, कृष्ण को प्रसन्न करना, बस ये है हमारा भक्ति। उससे हम प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन हमारी प्रसन्नता के लिए भजन नहीं, अपने सुख के लिए भजन भी शुद्ध भजन नहीं है। गोपियों की जहां बात करें, सजा तैयार होना, बोलना, चलना, मान करना, रोना, सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो हम भी प्रयास करेंगे हमारे जीवन में राधा रानी के चरणों में कातर प्रार्थना करिए कि कृष्ण के चरणों की शुद्ध सेवा में अखंड हमें शक्ति दो, ताकि हम भी कृष्ण की सेवा में पूर्णतः जब तक सांस चलती हो लगे रहे, क्योंकि यही दे सकती है कृष्ण प्रेम का भंडार, यह है कृष्ण प्रेम की शक्ति इनके पास, और इन्हीं की कृपा से कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो हमें आज का दिन हमारे लिए बहुत महिमा मंडित है। आप सभी वैष्णव पूरा दिन हाँ, राधा रानी के गुण सुनिए, कीर्तन करिए, अभी अभिषेक होगा 15-20 मिनट के बाद, और उसके बाद फिर दर्शन खुलेगा, फिर प्रसाद सिंगार के, फिर प्रसाद, फिर आरती, पूरा दिन बहुत सारी लीला है राधा रानी की। मैं केवल बाल लीला और कुछ पौगंग या परकिया रस की लीला कहा, बहुत है, लेकिन सारी लीलाएं किसमें आकर सम्मिलित है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सारी लीलाएं महामंत्र में समा गई है। इसीलिए महामंत्र को बोलिए, गाइए, सुनिए, भगवान की कृपा, राधा रानी की कृपा से कृष्ण प्रेम की उपलब्धि होगी। धन्यवाद, आप लोगों ने इतने धैर्य से सुना कि कहीं 2-2.5 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। फिर भी कुछ त्रुटि हुई हो तो आप क्षमा करेंगे वैष्णव, मेरे पे कोई इतना अधिकार नहीं, लेकिन हम तो सुने हैं गुरुजनों से जो पढ़े हैं, तो आप वैष्णव को भक्ति वर्धन हो, राधा रानी का महिमा कुछ बताने का प्रयास किए। फिर भी जीव है, गलती तो होना ही है, लेकिन आप वैष्णव क्षमा करें और सार सार ग्रहण करें। ओके, जो गलती हो वापस छोड़ दीजिए मेरे को, जो अच्छा है उसको लेकर अपने जीवन को कृष्ण भक्ति से सजाइए, राधा रानी प्रसन्न हो जाएगी। हरे कृष्णा हरे राधा रानी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, राधा गिरिधारी भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।